कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेष्व नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अपार कृपा से ये भगवत वाणी ये भगवत वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत विश्व भर में सब भाषाओं में लोगों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है और इसके अंतर्गत यहाँ कृष्ण मंदिर रानी बाग में कृष्ण गोपाल सूरी और परिवार की ओर से 7 दिन के सत्संग में आज 6ठे दिन के भागवत की कथा में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं सोरी परिवार और कृष्ण मंदिर के सारे पदाधिकारी और विप्रवरों का जिन्होंने सुंदर हरि कथा के लिए वातावरण की व्यवस्था की है और हमारे इस्कान पंजाबी भाग के मंदिर के भक्त यहाँ कीर्तन के लिए आए हैं। हमारा वहाँ का सहयोगी अध्यक्ष वररूप प्रभु और हरे कृष्ण कृष्ण राम राघव प्रभु और जो कीर्तन हमारा मधुर कर रहे हैं ये सब बच्चे पधारे हैं और साथ में ये श्रीमद् भागवत भी प्रसाद के रूप में यहाँ लाके विराजमान किया है। जो श्री कृष्ण जैसे कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ श्री विग्रह है वो विग्रह तो अचल विग्रह अपने स्थान के ऊपर विराजमान रहता है लेकिन ये श्रीमद् भागवत वही श्री राधा कृष्ण का चल विग्रह है जो चल के आपके साथ आपके घर जा सकता है और इसको हर वक्त आप बैठ के इनसे इनकी पूजा कर सकते हैं इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज ये भी यहाँ विराजमान हुए हैं और अब हम कल जहाँ हम कथा को विराम दिया था वहां से आगे बढ़ेंगे। दसम स्कंद श्रीमद् भागवत का भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। हाथ में भगवान के होंठों पे बांसुरी है और सबको प्रेम की तान से पुकार रहे हैं आओ आओ देखो मैं कैसे जब इस भूमंडल पर ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में अपने स्वयं रूप में प्रकट होता हूँ तब मैं अपने साथ मुझसे माता पिता की तरह प्रेम करने वाले वात्सल्य के भक्तों को साथ लाता हूँ। मेरे बराबर के मेरे साथ मैत्री करके सखा रस में क्रीड़ा करने के लिए मैं सखा साथ लाता हूँ और मुझसे प्रेम करने वाली मेरी शक्ति का ही जो विस्तार है गोपियाँ उनको साथ लाता हूँ और मेरे सेवकों को साथ लाता हूँ और इन सब की व्यवस्था और साथ में गोवर्धन को धरती के ऊपर गोलोक से लाता हूँ जमुना जी को लाता हूँ और तब मैं 11 वर्ष तक ब्रज के अंदर गोकुल में वृंदावन में नंदगांव में 3.5 साल की अवधि तक 3 साल 4 महीने कभी 6 महीने तक मैं ऐसी अद्भुत लीला करके जो संसार में सबके बंधन का कारण है संबंध बेटे का संबंध हो या पति का संबंध हो या मित्र का संबंध हो या प्रेमी का संबंध हो जो संसार में आपके बंधन का कारण है आप मेरे साथ ये संबंध जोड़ लो तो आपके सारे बंधन कट जाएंगे। तो भगवान आते हैं अपनी ओर आकर्षण करके हमें निमंत्रण देने के लिए। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। श्री चैतन्य चरित अमृत में श्री कविदास गोस्वामी लिखते हैं कृष्णदास कि इस बार जब स्वयं भगवान के अवतार लेने का समय निर्धारित हो चुका था उस समय ब्रह्मा जी को लेकर पृथ्वी ने धरती का भार उतारने के लिए भी प्रार्थना की थी तो इसीलिए ऐसे एक ही समय पे स्वयं कृष्ण भगवान को तो आना ही था तो फिर विष्णु भगवान जो अवतार लेके धरती का भार उतारते हैं असुरों का संहार करते हैं धर्म की स्थापना करते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण में समा गए और साथ आ गए। तो ये सिद्धांत ये है कि जो भी असुर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उधार हुआ असुरों का ये असुर मारने का काम विष्णु ने किया। भगवान ने तो केवल ब्रज की मधुर लीलाएं की तो सारे जितने भी अवतार हैं वो भगवान के अंदर समा जाते हैं जब श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। तो इसलिए कल आपको ये संकेत बताया था कि जो वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं वो असल में वसुदेव कृष्ण जो है वो अवतार हैं जो धरती का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना और धरती माता की प्रार्थना के लिए आए हैं धर्म स्थापन करने के। जो बालक नंद और यशोदा के वहां प्रकट हुआ है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन है और वो तो केवल ब्रज में ही ऐसी सुंदर लीलाएं करके सबको अपनी ओर आकर्षण करने के लिए आया है। उनको ब्रज से बाहर कभी जाना नहीं है वो नित्य ब्रज में रहते हैं, कभी प्रकट लीला में कभी अप्रकट लीला में। जब अवतार होता है तब प्रकट थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, जब अवतार नहीं होता है तो अप्रकट नित्य लीला उनकी वृंदावन में चल रही है। आज भी वो वृंदावन में अपने परिकरों के संग, अपने भक्तों के संग जो उनके नित्य पार्षद हैं, लीला कर रहे। तो ये आज हम जो अब श्रवण करने जाए हैं लीला, ये भगवान के अवतार काल की लीला है। अब दोनों का एक शब्द में और अंतर सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो वसुदेव और देवकी के वहां प्रकट हुए वो है अवतार कृष्ण, और नंद और यशोदा के यहाँ प्रकट हुए वो है अवतारी कृष्ण, जो रे सारे अवतारों का सार है, जहां से सारे अवतार निकलते हैं। अब ये आगे लीला का विस्तार करें, उससे पहले दो दिन पहले भी बात की, आज फिर भी बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि का पहला जीव प्रकट हुआ है भगवान से, जिसका न कोई माता है न पिता है, भगवान गर्भ सागर में शयन करने वाले विष्णु की नाभि कमल से निकले हुए कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए हैं। वो ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करके, भगवान का दर्शन करने के बाद ये सिद्धांत स्थापित करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। वो नारायण से भी मिले, नारायण को भी हाथ मिलाया, नारायण से भी चर्चा की, लेकिन फिर अपने अनुभव की कसौटी के ऊपर ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, और कैसे हैं ये परमेश्वर कृष्ण सचित आनंद विग्रह, उनका जो स्वरूप है, जो उनका मूर्त है, जो उनका रूप है, वो सत है, सदा रहने वाला है, चित है, सब कुछ जानने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान सब स्वत उनको सब पता लगता है, और वो आनंद की आनंद घन मूर्ति है। तो भगवान के चित्त का परिभाषा होती है भगवद गीता आदि के ज्ञान देने से, लेकिन भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति होती है रासलीला आदि। आनंद के कब मिलता है, जब रस होता है, रस में आनंद होता है, रस से रास हो गया, तो रसमय कोई चीज होनी चाहिए, हर चीज हमको रसीली होती है तो अच्छा लगता है। तो ये रसीलो छेल छबीलो जो भगवान श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी के शब्दों में सच्चिद आनंद उनका विग्रह है, उसका शरीर सदा नित्य न्यूतन, न्यूतन का मतलब नया रहता है। चार चीजें ऐसी विशेष श्री कृष्ण में है जो नारायण तक में नहीं पाई जाती। एक बांसुरी किसी के पास नहीं होती, बांसुरी केवल श्री कृष्ण के पास, और वो भी केवल वृंदावन में, न मथुरा में होगी न द्वारका में होगी। कृष्ण मथुरा और द्वारका में जाएंगे लेकिन बांसुरी नहीं जाएगी, उस मुरली नहीं जाएगी, वेणु नहीं जाएगी। तीन नाम है, बांसुरी वेणु मुरली। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं जिनको समझना आसान नहीं है। उनकी लीलाएं, नारायण का कोई पिता नहीं होता, माता नहीं होता, लेकिन कृष्ण को सब कहीं अपना बेटा बना लेते हैं। नारायण को बेटा नहीं बना सकते, नारायण को सखा भी नहीं बना सकते। ये लीला विष्णु में नारायण में नहीं हो सकती, वहां तो केवल ढाई रस हैं, शांत रस है, दास रस है, और थोड़ा सा लक्ष्मी के प्रेम के कारण मधुर रस है, लेकिन श्री कृष्ण में 12 रस परिपूर्ण है, 5 मुख्य रस और 7 दूसरे रस कृष्ण में परिपूर्ण है, और किसी में नहीं। आप कृष्ण, आप नारायण को मित्र नहीं बना सकते, अपने घर में नहीं बुला सकते हैं, और किसी घर में जाएगा भी नहीं। तो ये जो विशेषता है भगवान श्री कृष्ण की, वो ब्रह्मा जी के शब्दों में है, सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। ये गोविंद जब कुछ नहीं था तब भी था, जो कुछ दिख रहा है इससे निकला है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, इसको कहते हैं आदि पुरुष। आदि मतलब जिससे पहले और कोई नहीं था, जो कुछ है उसी से निकला है। अब उससे कैसे निकला है, एक उससे निकलते हैं विष्णु तत्व, वो एक से अनेक हो जाते हैं अवतार के रूप में। जितने भी आपको नरसिंह मिलेगा, वारहा मिलेगा, मच्छ मिलेगा, कच्छ मिलेगा, रामचंद्र मिलेगा, ये सब जितने अवतार हुए हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण से विस्तार होता है, तो उसको कहते हैं विष्णु तत्व। ये कैसे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से पहले अपने जैसा बलराम जी को प्रकट करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, बलराम जी का रंग गोरा होता है, श्री कृष्ण का रंग सांवला होता है। तो बलराम जी गोरे प्रकट होते हैं, ये बलराम जी अपने आप को सृष्टि करने के लिए पांच में विभाजित करते हैं। बलराम जी पांच बन जाते हैं, तीन विष्णु, तीसरे स्कंद और दूसरे स्कंद में आपको हमने बताया था महाविष्णु कारण सागर में सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का कारण। फिर हर ब्रह्मांड में जब दूसरा विष्णु जाता है तब ब्रह्मांड में उत्पत्ति होती है, बगैर विष्णु के प्रवेश के ब्रह्मांड तो जड़ है। तो दूसरा गर्भ सागर में शयन करने वाला विष्णु, और तीसरा क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु जो परमात्मा हमारे हृदय में है, ये सब बलराम जी का विस्तार सृष्टि के लिए है, और स्वयं फिर पृथ्वी को धारण करने के लिए अनंत शेष का रूप धारण करते, और भगवान के अवतार में सेवा का सहयोग करने के लिए लक्ष्मण बन के राम के संग आते हैं, बलराम बन के कृष्ण के संग आते हैं, नित्यानंद बन के चैतन्य महाप्रभु के संग आते हैं। तो ये पांच रूपों में बलराम जी सृष्टि में सहयोग करते हैं, और चार में एकदम विभाजित हो जाते हैं, वैकुंठ में वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसको चतुर्व्यूह बोलते हैं। और ये सारे वैकुंठ अनंत वैकुंठ है, वहां ये नारायण के रूप में रहते हैं। तो ये सारे विष्णु तत्व हैं, ये भगवान के समान हैं, लेकिन उन सब का उत्पत्ति कृष्ण से हुई है, इसलिए कृष्ण आदि पुरुष। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से उल्टे हाथ की तरफ से एक और गौरी मूर्ति प्रकट होती है, उसको राधा कहते हैं। सीधे हाथ से विष्णु तत्व प्रकट हुए, उल्टे हाथ से शक्ति तत्व प्रकट हुआ, और वो भी राधा रानी का प्रकट है। तो राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, कोई स्त्री नहीं है, भगवान के अपने अंग से प्रकट हुई है वो राधा रानी। जैसे जितने विष्णु, जितने अवतार इस तरफ बलराम सिंह जी से प्रकट होते हैं, जितने भी अवतार हुए हैं या होने वाले हैं या होंगे, ऐसे राधा रानी का विस्तार होता है वैकुंठ की लक्ष्मियों के रूप में। जितने भी विष्णु होंगे, नारायण होंगे, उतनी लक्ष्मियां चाहिए, वो सारी लक्ष्मियां राधा रानी अपने आप को विस्तृत करती है, वो सब लक्ष्मियां हो जाती। फिर राधा रानी का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब आप जैसे आईने में खड़े होते, अपना आपका प्रतिबिंब, राधा रानी के प्रतिबिंब रूप सारी द्वारका की श्री कृष्ण की रानियां हो जाती। वो कहां से निकलती हैं, वो राधा रानी का प्रतिबिंब है। राधा रानी अपने आप को प्रतिबिंब रूप से विस्तार करते करके द्वारका की रानियां बनाती हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश। राधा रानी का प्रकाश विलास, प्रकाश का विलास है। और जितनी गोपियां ब्रज में हैं जो आती हैं, वो राधा रानी का काया व्यू है। काया मतलब शरीर, वो अपने ही शरीर में से इतनी गोपियां बनाती है, क्योंकि जब ज्यादा कुछ होता है तब रस अच्छा आता है, रस में बहुत ज्यादा संख्या में चाहिए। तो ये तीन वर्ग लक्ष्मियां, लक्ष्मियां वैकुंठ में, गोपियां वृंदावन में, गोकुल में, और रानियां द्वारका में, ये सब राधा रानी का विस्तार है। तो एक तो इस तरफ शक्ति का विस्तार हुआ, इस तरफ विष्णु तत्व का विस्तार हुआ। और जब भौतिक जगत का संचालन चलाना होता है तो राधा रानी का छाया का रूप है दुर्गा। एक प्रतिबिंब हुआ, एक छाया हुआ। तो भगवान राधा रानी के छाया के रूप को दुर्गा कहते हैं, जो भौतिक जगत में संचालन चलाती। तो भौतिक जगत के संचालन चलाने वाली दुर्गा को कहते हैं भगवान की बाहर अंग शक्ति। बाहर अंग शक्ति, बाहर अंग मतलब बाहर का काम करने के लिए, बाहर का मतलब आध्यात्मिक जगत से बाहर, भौतिक जगत के संचालन के लिए। और राधा रानी को बोलते हैं अंतरंग शक्ति, वो भगवान के आध्यात्मिक जगत के अंदर सारा व्यवस्था देखती। जैसे गवर्नमेंट है, तो ये दोनों गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है आध्यात्मिक जगत की, एक गवर्नमेंट है भौतिक जगत की। भौतिक जगत की गवर्नमेंट है दुर्गा और आध्यात्मिक जगत की सरकार है राधा रानी। इन दोनों के बीच में हम जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, इसको कहते हैं विभिन्न अंश। विभिन्न का मतलब एक स्वांस मतलब अपना, अपने जैसा। विभिन्न मतलब अपने से अलग भी हो सकता है। जैसे हमारे नाखून है, ये नाखून हमारे हिस्सा तो अंग का है, लेकिन समय समय के ऊपर ये अलग भी हो जाते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ऐसे हम जीव हैं भगवान के अंश, लेकिन कभी कभी अलग हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। भाई नाखून कटने के बाद किसी काम का नहीं है, अगर लगा हुआ है शरीर में तो काम का है, बहुत काम कर सकता है ये नाखून। और नहीं, हाथ में नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो ये जो हम जीव हैं, ये ऐसा भगवान का अंश है जैसे शरीर का अंश नाखून है या बाल है। है तो शरीर का अंश, लेकिन शरीर से अलग भी हो सकता है। और जब हम अलग होते हैं तो हमारे लिए दो ही रास्ते हैं, या तो हम भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में रहें जो मां है, और उसमें नहीं रहेंगे तो अपने आप हम गिरेंगे भगवान की बाहरंग शक्ति के गोद में जो माया है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो माया की गोद में जाएं या मैया की गोद में जाएं। मैया की गोद छोड़ने से माया की गोद में अपने आप गिर जाती, और उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो ये इस दुनिया, इस जगत को क्या बोलते हैं, माया का जगत। माया के जगत की परिभाषा, जैसे मैका बोलते हैं, मैका किसको बोलते हैं आपकी भाषा में? हाँ, विवाह के बाद स्त्री की माता के घर को मैका बोलते हैं। किसी भाषा में मैका बोलते हैं कि मां का घर है, इसलिए मैका बोलते हैं माया को, मां का घर। पिता का घर होते हैं तो पिता के घर के नाम से कुछ भाषा में वैसे बोलते हैं। अब ये हमारा प्रश्न है आपसे, कोई विवाहित स्त्री क्या अपने माता पिता के घर में सुखी रह सकती है, मैके में सुखी रह सकती है? हाँ, नहीं रह सकती ना। ऐसे हम जीव इस माया के जगत में सुखी नहीं रह सकते, ये हमारा मैका है, हम सब मैके में आए हुए हैं। लेकिन आपने देखा है जब मैके में जाती है ना स्त्री, तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करती है, जैसे चाहे जैसे चलती है, ससुराल में नेम से चलती है, वहां उसका व्यवहार दूसरा होता है। और मैका में आने के बाद वो स्वच्छंद हो जाती है। ऐसे हम माया के जगत में स्वच्छंद हो गए। ये संसार हम सबका मैका है, पुरुषों का भी मैका है और स्त्रियों का भी मैका है, क्योंकि ये माया का है। और हम हैं असल में, हमारा पति है भगवान जगन्नाथ, वो जगत का पति है, वो नाथ है, वो स्वामी है। हमको वहां सुखी रह सकते हैं, लेकिन हम माया मैके में आ गए हैं, महीके में थोड़े दिन खुश हो जाओ, लेकिन वापस अपने घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी कथा सत्संग का उद्देश्य है कि मायके वालों को कहना है अपने घर जाके सुखी हो जाओ। आज तक कोई मायके में सुखी नहीं है। जब तक माता पिता है तो कोई देखभाल करेगा, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। मायके का तो ये हाल होता है। तो ये संसार हमारा मायका है। अब तीन शक्तियां आपकी भगवान को बता दिया। हम जब हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं तो हरे शब्द राधा रानी को संबोधन है, जो हमारी माता है। हम कहते हैं हम मायके आ गए हैं, माता हमको वापस भगवान के चरणों में पहुंचा दो, हम वापस घर आना चाहते हैं। और इसको श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है ऐसे गाना चाहिए। जब हम उच्चारण करते हैं तो अबोझ बालक अभी कुछ जानता नहीं है, वो माँ के लिए रोता है, ऐसे हमको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य वहां कंस के कारागृह में भी और फिर गोकुल में भी भगवान को वसुदेव छोड़ के आए। वो श्री कृष्ण नंदनंदन कृष्ण के अंदर समा गए और दोनों एक हो गए। और सुनंदा जो नंद बाबा की बहन थी, उन्होंने बालक को देखा, बालक रोया और ये समाचार नंद बाबा तक पहुंचा। और दूसरे दिन नंद बाबा के यहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ, उसका नाम है नंद उत्सव। नंद उत्सव की शुरुआत कैसे होती है? दूसरे दिन पहले तो ग्वालों ने अपनी गायों को सजाया और सारी नंद भवन में ले आए, क्योंकि गोपाल आए हैं तो गायों को सबसे ज्यादा खुशी हुई। पहले गायों को सजा के लाए, और जब ग्वाल बाल जो थे नौजवान वो तो दूध दही मक्खन साथ लाए, और बूढ़े बूढ़े जो थे ग्वाल बाल वो अपने पुराने रखे हुए नए नए कपड़े निकाल के आंखों में काजल डाल के और जितना हो सके उतना सुंदर बन के नंद भवन में आने के लिए तैयार हुए। और गोपियां घर से बहुत सुंदर, एक तो भेंट देने के लिए यशोदा को, और हल्दी और नारियल और ऐसे जो मंगल वस्तुएं उसको लेकर और बड़े उत्साह के साथ नंद भवन की तरफ चली हैं। अब जब सब नंद भवन में आए हैं तो वहां नंद के उत्सव में मुख्य क्या चीज एक दूसरे को खुशी में, पहले नंद का उत्सव शुरू कब हो? नंद का उत्सव शुरू तब हो जब बरसाने से राधा रानी की मैया कीर्ति वो जब दही का मटका लेके सर के ऊपर आए और वो लेके बीच में खड़ी हो जाए और सब नृत्य करते हुए उसके मटके को जब तोड़ा जाएगा तब उत्सव शुरू होगा। अब तब तक सब तैयार खड़े अपना सामान लेकर, और जैसे मैया कीर्ति बहुत सुंदर मटका उठा के लाई है दही का भरा हुआ और बीच में खड़ी है, तब अब नंद बाबा उठते हैं तो उसका मटके को फोड़ते हैं, फिर दही गिरा तो फिर एक दूसरे ने सब तरफ से दही और दूध और मक्खन एक दूसरे के ऊपर मारना शुरू किया, और घृतांबू एक बहुत अच्छा घी और उसके अंदर केसर और ये मिलाकर वो एक दूसरे के ऊपर रंग डालने लगे, और मक्खन थोड़ी देर के बाद ऐसे लगा नंद बाबा का जो आंगन है वो खीर सागर हो गया, कि दूध दही मक्खन ऐसे पड़ा हुआ है। अब सबने कहा नंद बाबा बैठे हुए हैं, नंद बाबा आज आपके घर में बालक हुआ है, उठो तो सही, आज तो आपको लज्जा छोड़ के आओ बीच में, और बीच में लाके खीर सागर में खड़ा कर दिया नंद बाबा को, और जो यहाँ फेंट बंधी हुई थी उसको खोली और फेंट थी लंबी, एक तरफ में बरसाने वालों ने पकड़ी, ग्वालों ने, एक तरफ में नंद बाबा, और फिर खींचा और नंद बाबा बीच में फुरकनी बन गया, ऐसे घूमने लगे। अब घूमने लगे तो ये नया समुन्द्र मंथन होने लगा। इसको नया समुन्द्र मंथन का दर्शन कहा गया है। उस समुन्द्र मंथन से पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। यहां तो नंद अहलाद, नंद के घर में अहलाद देने के लिए अमृत पहले ही कृष्ण रसामृत प्रकट हो गया, रसराज कृष्ण पहले प्रकट हो गया। ये तो मंदराचल के अंदर नंद बाबा बीच में, और ये बहुत सुंदर दर्शन है कि दहे खीर सागर का जैसे मंथन हो रहा है। और फिर तो एक दूसरे को ऐसे जो फेंक रहे थे मक्खन के लोंदे, वो मथुरा से कोई 110 साल की बुढ़िया देखने आई थी, बोला ऐसा उत्सव तो कभी देखा नहीं, इतना सारा दही दूध है तो खीर सागर बना हुआ है। और ऐसे मुंह खोल के खड़ी थी कि वाह ऐसा अच्छा है। किसी ग्वाल बोल ने ये दे मारा, मक्खन का लोंदा सीधा उसके मुंह में। वो बोला इधर तो कोई भूखा भी नहीं है, मक्खन भी मुफ्त का सीधा मुंह में आता है। ओ मैया बड़ी खुश हो गई, दांत चेल थी नहीं, कहीं रुकावट हुई नहीं। तो ये नंद बाबा ने फिर कहा कि अब जितने लाए हैं जो घर में है वो बांटते जाओ, क्योंकि कृष्ण के आने के बाद लक्ष्मी तो वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आ गई थी, नंद बाबा जितना दे उतना घर में बढ़ता जाए। तो नंद बाबा का नाम हो गया महामना। महामना मतलब मानो जिसके पास हो 100 रुपया और 110 रुपया देने की ताकत रखता हो और फेंक दे पता नहीं कितना दे दिया। और फिर नंद बाबा ने देखा ये दे तो सबको रहा हूं लेकिन अब रोहिणी नहीं आई। तो अंदर जाके रोहिणी को कहते हैं आपका लाला है, आपकी जब आप आई हो तब हमारे घर में आज बेटा पैदा हुआ है। मैं जानता हूं आपका पति यहां नहीं है लेकिन आपके अपने बेटे के लिए आपको आना चाहिए। तो रोहिणी अंदर से बोला आज यशोदा तो है नहीं, वो सूत की ग्रह में, घर की मालकिन आपको, आपको संभालना पड़ेगा। तो बलराम जी माता रोहिणी को भी बाहर लाए हैं और जिन लोगों को मिला है दान दक्षिणा, तो कोई आदमी वहां से ले जा रहा था चांदी सर के ऊपर भर के। तो जाते हुए किसी ने पूछा कहां से आ रहे, बोला नंद भवन से आ रहा हूं। बोला क्या लाए, बोला चांदी। अरे सोना मिलता चांदी लाए हो, वो सोना उधर ही फेंक दिया गली में, वापस गया सोना लेने के लिए, तो सोना उठा के जा रहा है। तो दूसरे का क्या लाया, नंद भवन से सोना लाया। अरे उधर हीरा मानी माणिक मोती मिल रहा है, वो सोना उधर फेंक दिया, वो हीरा माणिक मोती ला रहा है। अब तो सारे ब्रज के गली गली में कहीं चांदी पड़ा है, कहीं सोना पड़ा है, कहीं हीरे पड़े, कहीं मोती पड़ा है। इसी को बोलते हैं लक्ष्मी ब्रज की गली गली में बिखरी हुई है। लक्ष्मी ने पूरे ब्रज को श्री युक्त कर दिया है। और इतनी गायों का नंद बाबा ने दान करना शुरू किया कि शंकर बाबा आए थे उस नंद उत्सव देखने, और नंद बाबा को जैसे गाय देखना देखा वो अपने बैल की पूछ पकड़ के खड़े हो गए, कहीं ये मेरे बैल को गाय समझ के दे न दे। शंकर जी तो बहुत बड़े सावधान हो गए। और पार्वती आई थी, वो छोटे से गणेश को गोद में लेके खड़ी थी, होते हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, वो छुपा के कपड़े से कहीं छोटा हाथी समझ के इसको न दे दे। तो ये नंद उत्सव को ऐसा अद्भुत वर्णन किया है ब्रजवासियों ने और हमारे रसिकों ने और गोपाल चंपू में कि आज नंद के अहलाद हो गया, नंद में अहलाद। अहलाद प्रहलाद का अर्थ होता है अहलाद, अहलाद का मतलब खुशी होती है। तो अद्भुत खुशी आज नंद भवन में मनाई गई है। लेकिन दूसरे दिन नंद बाबा बहुत सावधान होके कहते हैं कंस का कर चुकाना चाहिए, इतना बड़ा घर में उत्सव हुआ है पास में मथुरा में, कंस का कर देना चाहिए। सो बड़े बड़े गोपों को तैयार किया, कहा दूध दही मक्खन लो, कंस को कर देने के लिए मथुरा चलते हैं और हमारे गोकुल की सुरक्षा नौजवानों के हवाले करके चलते हैं। और नंद बाबा चला है मथुरा में, बाहर एक बगीचे में डेरा डाला है, नंद के भवन में कंस के भवन में जाके दूध दही मक्खन का कर दे के वापस जैसे आया है अपने बगीचे में जहां बेल बंधे हुए थे, गाड़ियां बंधी हुई थी, तो वसुदेव मिलने आए हैं। नंद और वसुदेव का मिलन है, ये दो भाई हैं। कल हमने कहा था सिर्फ चाचा के लड़के हैं, माताओं का अंतर है, पिता दादा एक ही है। सो वसुदेव कहता है नंद आपको बधाई हो, इस उम्र में आपके घर में बालक पैदा हुआ। और नंद बाबा कहता है अरे मेरे भाई वसुदेव, इतना कष्ट तुमने यहां सहा है, हम आपका कुछ सहयोग नहीं कर रहा है कर पाए, हमको बड़ा दुख है। अब ये है दो दोस्त जब मिलते हैं, नंद बाबा अपनी खुशी की बात नहीं कर रहा है और वसुदेव अपने दुख की बात नहीं कर रहा है, और वसुदेव नंद की खुशी में खुश हो रहा है और नंद बाबा वसुदेव के दुख में दुखी हो रहे हैं। ये है दो मित्रों का मिलन, अपना रोना नहीं रो रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वसुदेव जानता है दोनों बच्चे मेरे हैं, बलराम तो वहां है ही, लेकिन कृष्ण भी मैं छोड़ के आया हूं, लेकिन दोनों का पालन पोषण ये कर रहे हैं, तो आप ही उनके पिता हो, आप ही उनको देखभाल कर रहे हो। और एकदम वसुदेव ने सावधान होके कहा कि महाराज नंद ब्रज में उत्पात होने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी वापस लौट जाइए गोकुल, क्योंकि वसुदेव क्षत्रिय है, राजनीति को जानता है, उसने कंस की चाल को सुन लिया था कि सारे बच्चों को मारने की योजना बना दी, और नंद बाबा बहुत सरल था, तो उसे कहा जल्दी जाओ। तो नंद बाबा ने क्या किया, बोला नारायण का शरण लिया, जो सबके हृदय में भगवान है उसका नंद बाबा ने शरण लिया, कहा अब नारायण तुम ही हमारे रक्षक हो, ऐसे करके बैलगाड़ियों को जोता और जल्दी वापस नंद गोकुल लौटने का तैयारी की। दूसरे तरफ से कंस की भेजी हुई बकासुर और अघासुर की बहन, नाम था पूतना, पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है उसको उठा के ला सकती है, और मूर्खता से गई कहां है, जिसके नाम लेने से दुनिया पवित्र होती है, विष्णु 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 कहने से दुनिया पवित्र होती है, उसको लेने के लिए पूतना जो पवित्र है उस पूत नहीं हो उसको ले सकती है, और उसके लिए शब्द है खेतरी, खे का मतलब आकाश से उड़ के जा रही है, और उसके लिए शब्द कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने बाल घातनी, बच्चों का सीना चीर के खून पीने वाली, रुधिर पीने वाली है। परीक्षित महाराज अभी अभी कृष्ण के जन्म के उत्सव की कथा सुनी थी, मुख उनका मुरझा गया कि ये राक्षसी स्वरूप चारिणी अपना रूप बदल सकती है और बच्चों का खून पीने वाली नंद गोकुल की तरफ जा रही है। तो सुखदेव महाराज ने परीक्षित के मुख के ऊपर थोड़ा चिंता को देख के कहते हैं, महाराज जिनके नाम लेने से कोई राक्षस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहां स्वयं भगवान विराजमान है, तो ये क्या करेगी उसका पूतना, आप चिंता मत करो। और पूतना 12 कोस की है, 12 कोस माने 24 माइल लंबी चौड़ी, और बड़ी भयानक है, उसका दर्शन जब कराएंगे आखिर में। अब बहुत सुंदर ऐसी नारी बनी है कि गोकुल में उतरी है तो सब कहते हैं लगता है कि इंद्र की पत्नी सची जा रही है नंद भवन में बधाई देने। अरे कोई कहता है नहीं हो सकता है सरस्वती आई हो, का दुर्गा तो नहीं है शंकर के कैलाश से आई हो, तो कुछ गोपियों ने कहा लगता है कि नंद के भवन में नारायण प्रकट हुए हैं, ये लक्ष्मी कहीं अपने पति को देखने तो नहीं आई, ऐसा ऐसा सब विचार करने लगे। किसी ने कहा सिर्फ हाथ में कमल नहीं है, बाकी तो लगती लक्ष्मी जैसी है, ये है भगवान की योग माया, लीला ऐसी है कोई पूतना को पहचान नहीं पाया, जिससे पूछे कि नंद का घर कहां है तो सभी बोले चलो दिखाते हैं, और नंद के भवन में पहुंच गई, और जैसे अंदर पहुंची है सीधी जहां कृष्ण सोया हुआ है और उसके ऊपर हल्का सा कपड़ा पीतांबर ढका हुआ है, और दोनों रोहिणी और यशोदा बैठी हैं, दोनों को कहती है कभी बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे बच्चे पालते हैं, ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है, दूध नहीं पिला सकती हूं, लाओ मैं पिलाती हूं। भगवान की दोनों माताएं योग माया ने ऐसी लीला करने के लिए मोहित कर दिया कि वो पहचान नहीं पाई कि ये कोई राक्षसी है, और उनके सामने उसने बाल कृष्ण को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी, इसके ऊपर बहुत से रसिक संतों ने अपने विचारों को प्रकट किया है। छः छः सत सात सात कारण तो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि बच्चा है, दूसरी किसी को नहीं जानता है तो आंखें बंद कर देता है, इसलिए बंद कर दी होंगी। ऐसे नहीं बंद करनी चाहिए, बच्चा भयभीत हुआ है, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या है, भगवान ने कहा मैं अगर इसको देख लूंगा तो ये अपने स्वरूप में आ जाएगी और ये बड़ी भयानक राक्षसी मेरी माँ ने देखी तो डर जाएगी, इसलिए अब आंखें बंद करनी चाहिए, इसका ये छिद्र रूप भले थोड़ी देर रहे, क्योंकि मैं देखूंगा तो ये जैसी है वैसी हो जाएगी और हो जाएगी तो सब यहां डर जाएंगे। और दोनों आंखें इसलिए बंद की, दोनों आंखों ने कहा एक आंख में सूर्य, भगवान की एक आंख सूर्य है और एक चंद्रमा है, और इस दुनिया से जब कोई मरता है तो सूर्य मार्ग से जाता है या चंद्र मार्ग से जाता है। दोनों ने कहा कि ये तो किसी तरीके मुक्ति की लायक है नहीं, हम तो आंखें बंद कर दे, हम रास्ता नहीं देंगे, भगवान की मर्जी जहां से इसको भेजे, लेकिन हमारे रास्ते नहीं जा सकती हम, ये तो किसी तरीके से इसका उद्धार हो ही नहीं सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भी सोचा आंखें बंद करके, मैं तो आया हूं गोकुल में दूध दही मक्खन खाने के लिए और ये पहले विष लगा के मुझे पिलाने आई, अरे विष पीना तो शंकर जी का काम है। आंखें बंद करके कहा आओ भोलेनाथ आप विष पी लीजिए और मैं इसका दूध पी लेता हूं। तो ऐसे भगवान ऐसे कई कारण बताए हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके ऐसा क्यों किया, और ऐसे भी किया कि आई है वनिता बन के पत्नी का रूप धारण करके और काम माँ की तरह दूध पिलाना चाह रही है, तो इसका मुख देखना नहीं चाहिए, श्रृंगार पत्नी जैसा करके आई है और भाव माँ का दिखा रही है तो ये दुष्ट का मुख नहीं देखना चाहिए। तो कई कारण है, और उसने उठाया और जबरदस्ती अपना स्तन उसके मुख में दे दिया, लेकिन उस जब मुख में स्तन दिया तो भगवान ने दोनों हाथों से तो उसका स्तन पकड़ा और दोनों पांवों से उसके पेट को लपक गए और ऐसा पकड़ा स्तन को, अब पूतना समझती है कि मैंने रस्सी समझी थी लेकिन ये तो असली सांप है। वेदांत तो कहते हैं भाई सांप में रस्सी को देखना, ये तो समझी थी ये कुछ भी नहीं है, ये तो अब छोड़ता नहीं है, और उसने दूध क्या पिया, प्राण खींचने लगे, उसको पीड़ा होने लगी और दोनों हाथों से कहती है छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान कहता है छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं, पकड़ना आता है छोड़ना नहीं आता, मैं आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं, एक बार पकड़ लिया तो उसको हम नहीं छोड़ते। अब भगवान अब ये देखिए 6 दिन का भगवान है और ये 12 कोस की पूतना है, ताकत लगा के भगवान से छुड़ा नहीं पाए, और 2.5-3 साल का कृष्ण है और यशोदा की गोद में बैठा है और दूध ऐसे ही पी रहा है जैसे आज पूतना पिला रही है, तब भगवान 2.5 साल से बड़े हैं और यशोदा ने ऐसे करके ऐसे नीचे पटका और नीचे बैठ गया और पूतना उसको उतार नहीं पाई, आश्चर्य है। और जैसे पूतना को पीड़ा होने लगी तो भगवान ने कहा अभी यहां नहीं, यहां से भागो, और पूतना वहां से कृष्ण को उठाया हुआ भागी है और जैसे ब्रज की सीमा से बाहर आई और कंस का 12 कोस का सुंदर बगीचा था, भगवान ने कहा ये इसके बगीचे का विनाश करे, हमारे ब्रज का विनाश न करे, न गाय के ऊपर गिरे और न ग्वाला के घर के ऊपर गिरे, कंस के बगीचे के ऊपर गिरे, और गिरते ही उसको तो उसके स्वरूप की प्राप्ति हो गई, वो लंबी 12 कोस की हो गई, उसकी जटाएं बड़ी बड़ी और स्तन जैसे पहाड़ हो, कोई चोटियां पहाड़ की हो, और पेट के ऊपर यहाँ बैठा हुआ छोटा श्री लाला बैठा है कृष्ण, और जहां उसके हाथ लंबा हुआ उसका नाम हतरस हो गया, और जहां अलकें गिरी वो अलीगढ़ हो गया, इतना बड़ा लंबा उसका शरीर था, तो हाथ गया हतरस में और अलकें गई अलीगढ़ में। अब गोपियां जो इसके पीछे भागी, यशोदा तो मूर्छित होगी, गोपियां भागी और उधर जाके देखती हैं ये तो बड़ी भयानक राक्षसी है, लेकिन डर नहीं लगा गोपियों को, ऊपर देखा कि लाला तो खेल रहा है जैसे चोटी के ऊपर बैठा हुआ है और नासिकाएं ऐसे लगती है जैसे पहाड़ की कोई गुफाएं हैं, अब ऊपर कैसे चढ़ें, तो बड़ी होशियार गोपियां दो पीछे बाल थे ना उसकी चोटी की सीढ़ी बनाई, जो दो चोटी के लगे लगे और बीच में एक एक लगा के सीढ़ी बनाए और उसके ऊपर चढ़ गई सारी। और गोपियां चढ़ गई चोटी की सीढ़ी बना के ऊपर और बच्चे को उतारा नीचे के लेके नीचे आई और आके कहा इसकी रक्षा करनी चाहिए, बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। इतनी भारी भारी राक्षसी थी, बोला रक्षा कैसे करेंगे? बोला गाय के खुर की धूली ले ली, गाय की पूछ को ले लिया और धूली से कहते भगवान मणिमान तुम्हारे सर की रक्षा करे, भगवान गोविंद तेरी बाजू की रक्षा करे, भगवान श्रीधर तुम्हारी छाती की रक्षा करे। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के नाम से और गौ के खुर की रज से और गौ की पूछ से रक्षा करने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे कि मेरे ही रक्षा मेरे नाम से हो रही और जिस गाय ने मेरी आज रक्षा कर रही है मैं बड़ा होके गाय की रक्षा करूंगा, अब गाय मेरी रक्षा कर रही है मैं गाय की रक्षा करूंगा। और फिर गोपियों ने कहा अरे हम तो मुर्दे मरे हुए राक्षस के ऊपर चढ़े, ये हमारे मंत्र तो काम करेंगे नहीं, हमने तो ऐसे ही पूजा करना शुरू कर दी, फिर जाके आचमन किया फिर शुद्ध हो गई और फिर सारे मंत्र पढ़ के गाय के पंचामृत लेके गाय का गोबर दूध ये और सब जगह अंगों में लगा के कृष्ण की जो है रक्षा के मंत्र पढ़ने लगी। ये मंत्र जिनके बच्चे हैं माताओं के उनको भागवत के दसम स्कंद में ये निकाल के तीस चौथे अध्याय में कहीं होंगे और रोज पाठ करना चाहिए बच्चों की रक्षा के लिए, तो उनको कोई न रोग हो और न कोई ऐसे पिशाच भूत प्रेत पूतना आदि का प्रभाव हो। बहुत अच्छे मंत्र हैं और 15-20 भगवान के नाम हैं जो बच्चों के अंग पे हाथ लगाना चाहिए। और तब उस बच्चे को उठा के उन्होंने यशोदा की गोद में दिया और यशोदा ने अपना स्तन दिया और देखा बच्चा दूध पी रहा है, इसका मतलब बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अब ये घर में बच्चा यहाँ पहुंचा है, वहां नंद बाबा की बैलगाड़ियां जैसे आ रही हैं तो रोड ब्लॉक पड़ा है, एक पहाड़ गिरा हुआ है, ये तो न तूफान आया न आंधी आई और कोई पेड़ नहीं गिरा, ये पर्वत कहां से रास्ते में आ गया? नजदीक जाके देखें सुबह गए थे तो यहां कुछ नहीं था, अरे ये तो कोई बड़ा आज राक्षस है। वसुदेव ठीक कह रहा था, ब्रज के अंदर उत्पाद हो रहे हैं, रास्ते में गिरा हुआ है। नंद बाबा ने ग्वालों को कहा ऐसे करो कुल्हाड़ी लाओ इसके सारे टुकड़े टुकड़े करो, सुना है कि राक्षस में वापस प्राण आ जाते हैं, और सबके टुकड़े टुकड़े करके पूतना के शरीर के, अब बोला लकड़ी लाओ, लकड़ी लाके और आग लगाई। और जैसे नंद बाबा के ग्वालों ने आग लगाई तो जो धुआं निकलने लगा उसमें से अगरबत्ती और उगरू की खुशबू निकलने लगी 10 कोस में, पता नहीं कहीं हवन हो रहा है क्या, ये तो पूतना के शरीर को भगवान ने क्या स्पर्श कर दिया, तो पूरा ब्रज का वातावरण सुंदर हो गया। और नंद बाबा वापस घर आके देखते हैं अरे इतनी बड़ी राक्षसी रास्ते में थी, बोला वही तो ये लाला को उठा के गई थी, अरे नारायण ने रक्षा कर दी। वो ब्राह्मणों को बुलाओ स्वास्थ्य वाचन कराओ, ब्राह्मणों को गौ दान किया का हमारे लाला की रक्षा करना, ऐसे ये पूतना के उद्धार की लीला है। ऐसे पूतना ने, ये पूतना बलि महाराज की बहन थी, रत्नावली इसका नाम था। और जब भगवान वामन देव बहुत सुंदर आए बलि के यज्ञ में तो रत्नावली ने कहा ऐसा मेरा बेटा होना चाहिए, तो मन में बेटे का भाव, इसको मैं दूध पिलाऊं कितना अच्छा है, मेरा स्तन पान कराऊं। और जब बलि महाराज को वरुण फांस में बांध दिया भगवान वामन देव ने तो कहा ये तो विष देने के लायक है, इसने मेरे भाई को बांध दिया है। तो भगवान ने कहा तेरी दोनों इच्छाएं पूरी करता हूं, तू विष लगा के गया और तेरा दूध भी पी लेता हूं, तो इसका दोनों इच्छाएं पूरी किया। लेकिन भगवान ने विष को देखा ही नहीं लेकिन उसको धात्री गति दे दी, मां के बराबर स्थान गोकुल में दे दिया, पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। तो भगवान ने विष को देखा नहीं, ये भगवान की बहुत बड़ी शिक्षा है। आदमियों में बुराई है उसको मत देखो, अच्छाई को आप ग्रहण कर लो, गुण ग्रही बनो तो सामने वाले की बुराई भी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद दूसरी लीला ये आती है कि भगवान अब 3 महीने से हो गए हैं, करवट अपने आप बदलना शुरू किया है। तो मां यशोदा कहती है सांडल्य ऋषि, सांडल्य ऋषि नंद बाबा का पुरोहित है और गर्ग ऋषि वसुदेव और यदुवंश का पुरोहित है, भागुर ऋषि वृषभानु महाराज का पुरोहित है। तो हरेक को हमने आपको कल परसों कहा था जिसका पुरोहित नहीं कुल पुरोहित नहीं, उसका हित कैसे होगा? भाई कोई सदमार्ग दिखाने वाला होना चाहिए ना, शुभ कार्य कराने वाला होना चाहिए पुरोहित। पहले तब हमने कहा पहले सबको कुल गुरु कुल पुरोहित हुआ करते थे, अब क्या है आजकल फैमिली डॉक्टर, उल्टा हो गया, सारा काम ही बिगड़ गया है। सो अब जहां सांडले ऋषि ने कहा अरे बच्चे ने करवट बदल दी, बड़ा उत्सव करते हैं, इसलिए हमारे घरों में रोज उत्सव होता है। उत्सव का मतलब होता है, जैसे उत्सव का मतलब है आदमी उठ के हाथ ऊपर करके उत्सव कहते हैं सांस को, जैसे सांस बाहर निकलता और आदमी कूद पड़े अपने आप को बचाने के लिए। उत्सव का मतलब खुशी ऐसी हो जिसमें आदमी झूमे गाए नाचे, तो उत्सव हमारे प्रतिदिन उत्सव है। बच्चे ने करवट ले ली और उत्सव ये है, सब गोपियों को बुलाया, सब लाख घर से अपना सामान लेके आई और यशोदा को बधाई देने लगी। अब जिसका उत्सव है उसको यशोदा मैया लेके बाहर आंगन में एक बैलगाड़ी का छकड़ा, जैसे बैलगाड़ी लकड़ी का छकड़ा था, उसके ऊपर बर्तन रखे हुए थे दूध दही के, और उसके नीचे सुला दी। और सुलाने के बाद छोटे ग्वाल बालों ने कहा इसको देखना, रोए तो हमको बुला लेना, और ये अंदर में वो गा रही हैं खा रही हैं उत्सव मना रही हैं। तो भगवान ने कहा उत्सव मेरे नाम का और मेरे को बाहर डाल दिया और अंदर माल खा रही हैं, अरे कम से कम मेरे से कुछ तो मेरे को भी देखें। और मैं रस राज इनके घर में आया और मेरे ऊपर ये गौ रस को रख दिया, मैं राजा और मेरे सर के ऊपर मटके और ये भी रस मेरे ऊपर रखा रस राज के ऊपर, अब दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। उस वक्त एक असुर था जो अदृश्य होता था, वो उस शकट कहते हैं छकड़े को, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, वो शटक के अंदर प्रवेश किया और भगवान उसने कहा कि मैं दबा के श्री कृष्ण को मार दूंगा। भगवान ने अपना पांव छोटा सा ऊपर उठाया और जहां पहिया लगा हुआ था और डंडा था उसको लगाया और धड़ाम से छकड़ा नीचे गिरा, असुर मरा और सारे बर्तन का आवाज हुआ अंदर से, सब गोपियां यशोदा बाहर आई, ये क्या हो गया, ये किसने गिराया, और सब कृष्ण की ओर देखने लगी। वो बच्चों को पूछते हैं किसने गिराया, वो कहते इतने पांव माला ही छोटा सा है ना इसके पांव से गिराया। बोले पागल है क्या, इतने इसके पांव से इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिरा, बोले इसी ने गिराया है, कोई नहीं माना। और नीचे से बालक को उठा लिया, फिर स्वस्ति वाचन किया, फिर पूजा पाठ किया, भगवान नारायण ने रक्षा कर दी। अब एक साल का हो गया कृष्ण, एक साल का हुआ, मैया गोद में लेके घूम रही है, कृष्ण भारी होने लगा, अरे ये तो रोज उठाती हूँ आज इतना वजन कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं मैं नीचे रखूं जरा घर का काम कर लेता हूँ। भगवान क्यों भारी हो गए, क्योंकि कंस मामा ने अब भगवान के लिए हवाई जहाज भेजा था आकाश में उड़ाने के लिए, पहले तो पूतना को भेजी थी आकाश मार्ग से, अब तो आकाश को उड़ाने के लिए भेज दिया। अब ये तृणावर्त जो हवा का बमंडल है ऐसे बन के आ रहा था, भगवान ने कहा मां के साथ उठा लिया तो मां मेरी डर जाएगी ऊपर आकाश में, और मैं तो आया ही ऊपर से हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं ऊपर होकर नीचे हो। और तृणावर्त आया और छोटे लाला को ऐसे उठाया और कन्हैया ने उसके गले को पकड़ लिया, तृणावर्त ऊपर गया, भगवान को बड़ा मजा आया, गोकुल को देखा गैया को देखा इतनी छोटी छोटी, तो मामा ने बड़ा कृपा किया हमारे ऊपर, आज घुमाने के लिए अच्छा सा हवाई जहाज भेजा है, चढ़ के घूमते हैं, थोड़ी देर घूमे ब्रज में तब तक तो ठीक है, वो मथुरा की तरफ जाए तो भगवान भारी हो जाए और वापस गोकुल आए तो हल्के हो जाए। तो उसको भगवान को थोड़ा मजा लेना, जैसे बच्चे कभी लिफ्ट में ऊपर जाते हैं नीचे उतरते हैं, थोड़ी देर तो इस मामा के हवाई जहाज के ऊपर भगवान घूमे और वो मथुरा की तरफ जाने लगा तो भगवान भारी लगे। उसने कहा अरे गले के अंदर किसने पहाड़ बांध दिया है मेरे, अरे पत्थर नहीं है, छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन गोपाल कहता छोड़ना हमको आता नहीं है, छोड़ना आता नहीं है। तो वो तृणावर्त ऐसे आया सीधा वापस नंद गोकुल में, एक पत्थर के ऊपर सर उसका गिरा, सर फटा और मरा, और सब दौड़ के आए देखें तो कृष्ण उसके गले को पकड़ के बैठा हुआ है, ये मामा के खिलौने से खेल रहा है। अरे ये क्या होगा, ये तो कंस का भेजा हुआ खिलौना समाप्त, और बच्चा खुश है, फिर पूजा कर दी, फिर प्रतिष्ठा कर दी। अब भगवान के बाल लीलाओं का इसके बाद वर्णन है, ये 3 साल 4 महीने तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में ऐसे मधुर लीलाएं करके और जो वात्सल्य का जो भगवान के साथ माता पिता की तरह प्रेम करना चाहते हैं उनको आकर्षण करके बुला रहे हैं, आओ आओ मुझसे प्रेम करो। और अब हम इसके बाद सीधा भगवान की बचपन की लीलाएं घर के अंदर, कभी बछड़े की पूंछ पकड़ के चले जाएं और बछड़ा भागे तो पीछे लटक रहे हैं, और कभी किसी के घर में जाएं और चूल्हे के अंदर मूत के आ जाएं, गोपियों को कुछ भी कभी भी कहीं जाए, किसी का मटकी फोड़ दे, किसी का कुछ भी कर दे, ऐसे लीलाएं करते करते इन लीलाओं का अब माखन चोरी की लीलाओं का दिन चालू हो गए हैं। तो ग्वालों का गुरु बन जाए, 2-2.5 साल के हुए नहीं है तो किसी का बछड़ा जाके खोल दें, वो दूध पी जाए, गोपी आके बोले हमारे घर में आया था, बछड़े को खोल दिया, गाय का सब दूध पी गया। दूसरी बोलती है हमारे घर 4-5 मिलके आए थे, बोला दूध दही दो, बहुत मेहमान आए हैं हमारे पास और मेहमानों को खिलाना है, हमसे लेके जाएं, हम देखें तो ये बंदरों को खिला रहा है। अरे ये तुम्हारे मेहमान है, बोला यही तो मेहमान है, ये तो अयोध्या से आए हैं ना, ये हमारे साथ गए थे अयोध्या में युद्ध कर में, ये सब हमारे वानर पुरानी सेना है, इसको दही दूध मक्खन खिला रहे हैं। बोला ऐसे कभी कुछ करे कभी कुछ करे, और रोज जाके गोपियां उल्हाना दे दें कि हमारे घर का माखन खा गया, हमारे घर में ये कर गया। तो एक दिन यशोदा ने कह दिया अगर आपके घर में इतना ही माखन खाने आता है तो कल दे दिया, कितना खाएगा, छोटा सा बच्चा है कितना खाएगा तुम्हारा माखन। तो एक दिन जाते हुए को गोपियों ने कहा कि आओ आओ कन्हैया कुछ माखन खा लो। बोला क्यों, भीख मंगाऊं तेरे घर का खाऊं? बोला फिर चोरी क्यों करते हैं? बोला मेहनत करके खाता हूं, कितना कूदना पड़ता है, उखल उठाना पड़ता है, कोई मुफ्त का थोड़ी खाता हूं। तो कोई तो ऐसे नहीं खाए तो यशोदा ने कहा कभी आपको पकड़ के मुझे ला के दिखा दो। तो गोपियों ने एक दिन षड्यंत्र बनाया कि कैसे भी कन्हैया को पकड़ेंगे, और खाएं कब पकड़ेंगे, बोले जब माखन खाएगा तब पकड़ेंगे। तो बहुत सुंदर माखन घर में तैयार किया, बड़ी बूढ़ी गोपियों ने ऊपर छिक्के में टांगा और नौजवान गोपियां गई पनगट पे। कन्हैया गैया चराने जाते जा रहा था तो बोला ए कन्हैया आज हमारे घर में बहुत सुंदर मक्खन बनाया है, आपको निमंत्रण है मक्खन खाने आना, ऐसे कह के आती थी। और कन्हैया ने कहा चलो मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन चलो चलते हैं आज। वो गोपी हमको निमंत्रण दे के गई, उधर गए तो देखें कि चारों ओर से गोपियों ने इनके पकड़ने के लिए बहुत बहुत घंटियां बांध दी हैं, दरवाजे में घंटी बंधी है, खिड़की में घंटी बंधी है। तो अब कहते हैं कृष्ण गोपियां देखो कितनी होशियार हो गई है, हमको पकड़ना चाहती हैं और घंटी बजेगी गोपी आ जाएगी। मैंने कहा चिंता मत करो घंटियों के, ए घंटियों का देवता घंटा कर्ण आ जाओ। घंटियों का देवता आया, बोला भगवान आज्ञा करो। बोला ए तेरी घंटियों को बोलो कोई नहीं बजनी चाहिए, जो आज्ञा महाराज। अब सब कूद गए, घंटी बजी नहीं, उखल में घंटी बजी नहीं, छीके में घंटी बजी नहीं, और भगवान ऊपर चढ़े, छीके सब मक्खन उतारा। अरे बोला मधुमंगल तुम खाओ, ब्राह्मण हो पहले खाओ। मधुमंगल बोलते खट्टा है, बंदर को देखे देखो बंदर नहीं खाए। भगवान ने कहा कोई नहीं खा रहा है, गोपियों ने हमसे धोखा किया, तो कल का मक्खन तो नहीं है, आज का ताजा तो नहीं है, देखूं क्या है। भगवान ने मुख में उंगली डाली और सारी घंटियां जोर शोर से बजने लगी। भगवान ने कहा घंटा कर तुमको खाता मत बजना। भगवान किसकी आज्ञा माने, शास्त्र में आपने लिखा है भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे, अब आप ही खा रहे हैं तो घंटी तो बजेगी। शास्त्र की बात माने कि आपकी बात माने, भगवान ने कहा शास्त्र की बात माननी पड़ेगी। नीचे वाले ग्वाल बाल भाग गए और इस चक्कर में भगवान कूद के और बाहर से गोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद किया तो खिड़की के अंदर से सब भागने लगे। तो ये मधुमंगल जो ब्राह्मण तो मोटा था, थोड़ा पांव से भी टेढ़ा था, वो अटक गया ऊपर। वो जो अटक गया तो गोपियों ने आके उसको बांध लिया। बोला अब देखो कन्हैया को कैसे बुलाती हैं। बाहर ले जाके मधुमंगल की चोटी में रस्सी बांध के, रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर से डाला, दूसरी तरफ से गोपियां रस्सी को खींचे और मधुमंगल की चोटी ऊपर जाए और ऐसे छीके। बोला कन्हैया बेचारे को ऐसे पकड़ लिया और भगवत भागता हुआ कन्हैया आया। कहते गोपियां ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ये कोई ग्वाल बाल नहीं है, आपने इसकी चोटी में रस्सी बांध दी है, आपको ये शराब देगा, आपको बूढ़े पति मिलेंगे। हाँ बोला अब आपको ये शराब देगा तो फिर क्या करें कन्हैया, बोला ब्राह्मण को लड्डू खिलाओ तब खुश हो जाएगा। अब से उसकी चुटिया खोली है, उसको आसन पे बिठाया है, सब गोपियां घर से लड्डू लाई और मधुमंगल को लड्डू खिलाया। फिर गोपियों ने एक दिन ऐसे ही कृष्ण को पकड़ा और सब ग्वाल बाल भाग गए और कृष्ण को पकड़ के बांध दिया खंभे के साथ गोपी, और गोपी बुलाने गई दूसरियों को कि आओ आओ आज पकड़ लिया अब ले चलते हैं। दूसरे बोला हम आती हैं आप पहुंचो घर। घर गई तो कृष्ण खुला हुआ खड़ा है। अरे तुम कैसे खुल गए, बोले तुम्हें बांधना आता नहीं है। बोले कैसे बांधते, बोला खड़ी हो जाओ दिखाते हैं। वो गोपी को खड़ी किया और पीछे से बांधा और चला गया। गोपियां आई तो देखे गोपी बंधी हुई है। अरे तो ये तो बड़ा नटखट है, माल भी खाए और घर के मालिक को भी चोर कर जरा बांध के चला जाए। फिर एक और प्रयास करते हैं पकड़ने का। एक दिन ऐसे गोपियों ने पीछे से छुप के देखा कन्हैया को, पकड़ने का प्रयास करते हैं तो एक दिन मैया ने देखा कि पराए घर में माखन क्या खाता है, अपने घर में माखन खा रहा है। अंदर मटकी में हाथ डाला है, मुंह में हाथ है लगा हुआ है, कान से पकड़ के बोलती है गोपियां सच कहती है तू अपने घर में चोरी करके माखन खा रहा है। तो कौन खा रहा है माखन, बोला ये देखो हाथ मटकी के अंदर पड़ा है, ये तो लाल लाल इतना देखो, आपने सुबह कंगन डाले इतना गर्म हाथ हो गया, मक्खन में ठंडा कर रहा हूं, हाथ को ठंडा कर रहा हूं, बहुत गर्म हाथ हो गया। ये बोला बड़ा होशियार हो रहा है तो तेरे मुख में कैसे लग गया माखन, हाथ ठंडा कर रहा था ना, बोला मक्खी बैठी होगी उड़ाई होगी इसलिए लग गया होगा। अरे मैया बोलता है बड़ा होशियार है ये तो चालाक है, मक्खन भी खाता है घर में भी मटकी का खाता है, मक्खन में मक्खी भी लग गई। अब एक दिन गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया को मक्खन खाते रंगे हाथों, मुंह में मक्खन हाथ में मक्खन, पकड़ के जोर से बाजू से बोला आज रंगे हाथों पकड़ा है, अब तुम्हारे यशोदा को बताती हूँ कि मैं रोज कहती थी नहीं मानती थी, आज तो तुमको हाथ से पकड़ के जा रही हूँ, लेके जा रही है बाहर, अपने घर से निकली आधे रास्ते में सामने से कोई बड़ी उम्र का गोप आ रहा था उपनंद, तो उसने लज्जा से मुंह ढक लिया। गोपी ने मुंह ढका, कन्हैया ने बोला इतना जोर से मत पकड़ो, दूसरा हाथ पकड़ो ये थक गया है। अब मुंह तो ढका हुआ था, सीधी पहुंची नंद भवन में, सुनो नंद रानी ये देखो आज तुम्हारे बच्चे को हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन रंगे हाथों पकड़ा है, अब तो मानोगी क्या चोरी करने आता है हमारे घर में। यशोदा कहती है बावरी तो किसको पकड़ के आई, ये तो तेरा छोरा है मेरा नहीं है, मेरा छोरो कैसे, तेरे छोरे को पकड़ के आई, खाते हुए कन्हैया को पकड़ा है। गोपी देखती है तो अपना बेटा है, अरे घर से उसको पकड़ के निकली रास्ते में दूसरा कैसे हो गया। अंदर खड़े हुए कृष्ण उसको ऐसे दिखा रहा है जवान। अब गोपी वापस लज्जा में जा रही है, कृष्ण घूम के सामने आया और आके कहा सुनो रे कैसे लगा, कभी करोगी हमको पकड़ने का प्रयास, इस बार तेरे बेटे का हाथ दिया अगले बार तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। तब गोपियों ने कहा अब तुम मक्खन खाओ तुम्हारा तुम्हारे पिताजी का, हम तुम्हारे को नहीं पकड़ेंगे, तुम मौज करो खाओ पियो। अब एक दिन बच्चे घूमने जाए गए यमुना के किनारे तो सारे ग्वाल बाल आए और दाऊ दादा आया बलराम जी और कहने लगे यशोदा को मैया आज तो कन्हैया यमुना के किनारे मिट्टी खा रहा है। यशोदा को चिंता हुई मक्खन अपने घर के खाए या किसी और के घर का खाए, मक्खन से तो बलवान ही होगा लेकिन मिट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो यशोदा ने छड़ी हाथ में उठाई है और सीधी यमुना के किनारे आई है और वहां जैसे ही पहुंची है कन्हैया को बोलती है कान से पकड़ा है, बोला मिट्टी खाई, बोला नहीं खाई, बोले सब ग्वाल बाल बोल रहे हैं, बोला झूठ बोल रहे हैं, बोले तेरा भाई बलव दाऊ जी बोल रहे हैं, बोला मैया तू इसको जानो नहीं, ये अंदर का बहुत काला है, बाहर को भले देखने में सफेद दिखे बहुत अंदर का काला है, झूठ नहीं बोलना था क्योंकि बलराम हमेशा कृष्ण का ध्यान करता है, उसके दिल में तो काला ही काला कृष्ण बैठा हुआ है, तो बाहर तो झूठ नहीं बोलेगा, भगवान झूठ बोलते ही नहीं, बात सच्ची कर रहे थे कि ये बाहर से देखने का गोरा है अंदर बहुत काला है। अरे मैया यही तो मुझे कहता है कि यशोदा गोरी नंद बाबा गोरा, तू कालो कलूटो कहां से आयो, तेरे को मोल के लाया है। आप बोले ये भी है मेरे से बेर पड़ा है इसलिए इसने बोला है। बोला आज सबने क्यों जाकर शिकायत लगाई। बोला मक्खन खाता है सबको बांट के खिलाता है, आज मट्टी अकेला खा रहा है, किसी को बुला नहीं रहा है तो सबको गुस्सा आया, शिकायत करने चले गए कि बाकी तो रोज साथ ले जाता है आज क्यों छोड़ के चला गया। अब तो गैया बोलती है नहीं तुमने माटी खाई, अभी दो दिन पहले मैया दूध पिला रही थी और मैया ने कहा ज्यादा दूध पी लेगा तो भगवान ने ऐसे जमाई ली और जमाई ली तो मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड देख लिया। और यशोदा ने कहा मेरे आंखों को क्या हो गया, बच्चे के मुख में ये क्या देख रहे हो। अब ये नहीं समझती मेरा बेटा तो मेरा बेटा, ये आंखें बंद करके ऐसे झटका दिया तो मुख खोला देखा तो थोड़ी देर के लिए आश्चर्य लगा। आज कहती है तुमने मिट्टी खाई, बोला नहीं खाई, मुंह खोलो। भगवान ने कहा मुंह तो आज खुलवाएगी नहीं क्योंकि कल तो इसने वो भय लगा था मेरा मुंह खुला हुआ देखा था, तो कहा मुंह खोलो। यशोदा ने कह दिया खोलो देखूं, तो जो मिट्टी थी उसको निगल गया और मुंह खोलने लगा। मुंह खोला तो यशोदा को पूरा ब्रह्मांड देखा, जमुना बहती हुई देखी, यशोदा देखी, उसके सामने कन्हैया बैठा है। अब यशोदा का दिमाग चकराने लगा कि ये कौन है, ये कौन इसके मुख में बैठा है। अब यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मांड का दर्शन हुआ और यशोदा बड़ी चिंतित हुई। थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा कहीं इसके मन में ये आए कि मैं भगवान हूं और मेरे को घर जाके अंदर ऐसे अलमारी के अंदर बंद करके बिठा दे और दो केले अंदर रख दे मेरे सामने तो मैं घूमने कैसे जाऊंगा। तो भगवान ने अंदर से वो छुपा दिया ब्रह्मांड और फिर छोटा सा बालक होके रोने लगा, बोला मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया वहां से उठाया कन्हैया को, ऐसी सीधी आगे चली गई चिंताहरण घाट पे। वहां चिंताहरण महादेव है, भगवान शंकर जी का मंदिर है चिंताहरण महादेव। और वहां से यशोदा मैया, बोला मट्टी क्यों खाई भगवान, इसके ऊपर भी कई कारण लिखे हैं कि भगवान ने मट्टी क्या। बोला ये सारा ब्रह्मांड मेरे पेट में, वो कहता है आज तुम गोपाल ब्रज में गए हो, ब्रज की रज की इतनी महिमा है, हमको थोड़ी ब्रज की रज चखा दो। तो मैंने अकेले ने थोड़ी खाई, सारे ब्रह्मांड ने ब्रज की रज खाने की इच्छा की। ब्रज की रज का तो महिमा ही कितनी बड़ी है कि ब्रज की रज महारानी है, वो रानी नहीं है महारानी है, उसको सफा करने वाले भी अपने आप को महारानी समझती है। वो एक टिकारी की महारानी थी कोई, बिहार की कोई महारानी थी, वृंदावन में आ रही थी पालकी में चढ़ के और एक मैत्रानी सफाई कर रही थी ब्रज की रज की, तो कह रहा था महारानी आ रही है मत। वो ये खड़ी होके झाड़ू लेके कहती है ये कौन रांड महारानी बन रही है, यहां तो महारानी तीन है, ये चौथी कहां से आ गई। तो रानी ने सुना नीचे उतरी, बोला क्या कह रही हो। बोला तू रानी कहां से हो गई, यहां तो एक राधा रानी है एक जमुना रानी है और तीसरी मैं मैत्रानी हूं जो ब्रज को साफ करती हूं, तू चौथी रानी कहां से आ गई। तो ब्रज की मैत्रानी भी संसार की रानी से महान है, अमेरिका की रानी से ब्रज की मैत्रानी महान है कि ब्रज की रज को रोज साफ करती है। और ब्रज की रज कितनी महत्वपूर्ण है कि भगवान को आश्चर्य लगा। हरे कृष्ण। तो यशोदा मैया ने यह मुख में भगवान के ब्रह्मांड को देख लिया। वैसे रज कहते हैं ब्रज को, रज कहते हैं, रज का मतलब रजोगुण। तो भगवान ने कहा मैं बहुत सात्विक हो गया हूं तो असुरों को कैसे मारूंगा, थोड़ा सा रज को मुख में डाल दूं तो रजोगुण आएगा, तब क्रोध आएगा, तब किसी को मारना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान ने बहुत भावों से इस रज का पान किया। अब क्या भगवान ने रूप दिखा दिया तो अब नाम तो अभी तक रखा नहीं है। अब जो नाम नहीं रखा है तो एक दिन, अब इसके बाद कथा ऐसे आती है कि परीक्षित महाराज बड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछता है इतनी गोपी की महिमा है कि भगवान उसका स्तनपान करते हैं, उसकी गोद में बैठते हैं, उसको ब्रह्मांड दिखाते हैं, कौन सा ऐसा पुण्य किया था यशोदा और नंद ने कि उनको ग्वाल बाल रूप में इस ब्रह्मांड के अधिनायक अखंड भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में मिले। तो सुखदेव महाराज ने पहला उत्तर दिया कि एक धरा और द्रोण नाम के दो वसु थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत प्रार्थना की थी कि हमको कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन कराओ, तो ये दोनों नंद और यशोदा बन के आए हैं ब्रह्मा जी की कृपा से। क्या ये सत्य है? ये इतना उत्तर दिया और फिर एकदम महाराज के मन में, सुखदेव महाराज के मन में आया कि परीक्षित तुम अभी इतने में आश्चर्यचकित हो गए, इस गोपी ने तो एक दिन इस कन्हैया को उखल के साथ बांध दिया था, अब ये उखल बंधन की लीला शुरू करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक दिन की बात है, ये जो एक भगवान सबको दे सकती है और भगवान को इसने ऐसा यश दिया है जो वेदों में भगवान का नाम नहीं है, दामोदर नाम ये तो भगवान का यशोदा ने दिया, तो इतना बड़ा यश भगवान को दिया कि दामोदर नाम उसको दे दिया। उसने सोचा कि मेरा लाला दूसरों के घर में माखन खाने क्यों जाता है, ये मेरी काम करने वाली माखन शायद दिल से नहीं बनाती है, और कल दिवाली का दिन भी है, काम भी बहुत है, फिर इंद्र पूजा का कार्य भी है, आज मैं स्वयं अपनी पद्म गंधा नाम की गाय है जिसको बहुत सी गायों का दूध पिलाते हैं, उसका दूध हमारे कन्हैया के लिए रोज तैयार होता है, मैं रात को बैठ के उस दूध को उबाल के और अच्छी तरह से जमाऊंगी, सुबह सवेर उठ के मैं मंथन करूंगी और मक्खन मेरे हाथ का कन्हैया खाए, फिर देखूं किसी के घर कैसे चोरी करने जाता। तो नंद रानी ने यह संकल्प कर दिया, यशोदा नंद गेहिनी, नंद के घर में आनंद देने वाली यशोदा ने जब ये कार्य कर लिया तो रात को दूध को जमाया, सुबह 4 बजे उठी, नहाया धोया और एक अलसी के पुष्प से बनी हुई पीले नीला पुष्प होता है अलसी का, और उसके तने अंदर से पीले होते हैं, उनकी बहुत एक रेशम की साड़ी पहनी। पूजा के कार्य में रेशम का कपड़ा पहने में दोष नहीं लगता है, पूजा में जप में पाठ में रेशम का कपड़ा पहना, और रेशम भी कीड़े वाला नहीं जो मारने से किसी जीव की हिंसा से होता है, नहीं, ये अलसी के फूल पुष्प का रेशम था। मैया ने पहना, हाथ में सुंदर चूड़ियां डाली, बालों में मालती के फूल डाले, कमर को कस के बांधा, क्योंकि भारी 5-10 किलो के दही का मंथन करने के लिए पीड़े के ऊपर बैठ गई और मटका आगे रखा और मंथन शुरू कर दिया, और मंथन शुरू शरीर से परिश्रम कर रही थी, मन से कृष्ण के बाल लीलाओं को गा रही थी, मुख से वाणी से गा रही थी, शरीर से काम कर रही थी और मन से चिंतन कर रही थी, अच्छा है सोया हुआ है नहीं तो काम नहीं करने देगा, बस अब मक्खन तैयार होने वाला है, कार्तिक का महीना है, दिवाली का दिन है, अब बस मक्खन तैयार हो तो उठाती हूँ। और वहाँ कन्हैया पलंग के सोया हुआ कहता है मेरी माँ मेरे नाम का कीर्तन कर रही है, गुणगान कर रही है, मैंने तो नारद को वचन दिया था कि जहाँ मेरे नाम का कीर्तन होता है वहाँ तो मैं चला आता हूँ, अब मेरी माँ कीर्तन कर रही है और मैं नहीं जाऊँगा तो लोग कहेंगे माँ के पास नहीं गया तो हमारे पास कहाँ से आएगा, नारद ने तो पूछा था कि भगवान तुम कैसे मिलोगे, बोला ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी ना मृदेशु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, अरे मरने के बाद वैकुंठ में मिलूंगा ये बात नहीं है नारद, या घर छोड़ के हिमालय जाओगे तो मिलूंगा ये बात नहीं है, तो फिर कहाँ मिलोगे, बोला जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहीं आता हूँ, तो माँ कीर्तन कर रही है तो आना चाहिए ना। कन्हैया उठा है, 3 साल की उम्र होने वाली है, उठा पलंग से नीचे उतरा है और घुटनों के बल चलता है तो आवाज़ सुनता है, मैया कह रही है गोपाल जय जय गोविंद जय जय, और फिर चूड़ी का खनक हो रहा है और दही के अंदर मंथनी कर रही है ड्रम ड्रम, और चूड़ी कर रही है छन छन, और मैया कह रही है गोविंद, अरे कीर्तन कहाँ हो रहा है, भगवान को कीर्तन का आवाज सुनने में समझ में आया और देखा ये मेरी मैया मंथन कर रही है, मैया को पसीना निकला है, अरे इतना सारा परिश्रम कर रही है, और लिखा है कि मैया को फूल नीचे गिरने लगे, पसीना होने लगा और स्तनों से दूध चूने लगा, बच्चे के प्रेम के कारण हृदय में स्नेह है और बड़ा परिश्रम कर रही है। इस झांकी को श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि जो कृष्ण को वात्सल्य प्रेम में अपना बालक समझते हैं उसको यशोदा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि कितने प्रेम से मक्खन निकालने के लिए परिश्रम कर रही है, कमर कस के बांधी है और बाल ऐसे नीचे झड़ रहे हैं कि इतना भगवान का प्रेम करने हुए। बोला ये मालती के फूल क्या होते हैं? बोला ये वेद की ऋचाएं हैं और कहती हैं जो भगवान के लिए ऐसी सेवा करे उसके सर के ऊपर हम नहीं उसके चरणों में हमका हमारा स्थान होता है। तो वो भी नीचे झड़ झड़ के गिर रहे थे और कन्हैया सामने आके खड़ा हो गया और मैया आंखें बंद करके गा रही है। कन्हैया देखता है कि माँ काम में मंथन भी कर रही है और गा भी रही है, तो वो कन्हैया का माँ को अपनी ओर आकर्षित कैसे करूं। तो ऐसे सोचते हुए उसने एकदम मंथनी को पकड़ लिया तो काम रुक गया। मैया ने आंखें खोली तो पहले बड़ी खुश हुई कि एक तो बच्चे को बुद्धि है अपनी ऊपर आकर्षण करने के लिए, रोया भी नहीं चिल्लाया भी नहीं और पकड़ लिया और इतनी बड़ी भारी को पकड़ लिया। इसका मतलब जो इसको मक्खन दूध दही खाता है शक्ति भी बहुत आ गई है, तो मेरे बच्चा स्वस्थ भी अच्छा है और बुद्धिमान भी है। तो माँ मुस्कुराई और कन्हैया अपने आप माँ की गोद में चढ़ के आ गए। स्नेह माँ के स्नेह के घोड़े के प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ के आया और माँ की गोद में चढ़ गया और माँ मक्खन त्यार को छोड़ के ढकना लगा दिया और बच्चे की प्रेम को देखकर अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। चढ़ के आया कृष्ण अपनी इच्छा से, मुख दिया स्तन दिया माँ ने मुख में। अब कृष्ण माँ को मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुख दे रहा है और माँ उसको अपना पिघला हुआ हृदय का अमृत दूध पिला रही। वैसे बच्चे से पिता भी प्रेम करता है, दादा भी करता है, मामा नाना नानी सब करते हैं, लेकिन केवल माँ का प्रेम ही पिघल के दूध बनता है। जो माँ का प्रेम है, भगवान तो बच्चे में प्राण डालता है लेकिन माँ बच्चे के ऊपर अपना प्राण निछावर कर देती है। इसलिए माँ का स्थान बहुत महान है। माँ ने वो काम रोक दिया, इतना भारी काम था मक्खन अब निकलना है ही नहीं, क्योंकि सर्दी में एक बार मक्खन नहीं निकला रह गया तो रह गया, वो आधे में पड़ा तैयार मक्खन को छोड़ दिया। बहुत बड़ा संकेत मिलता है, छोटे बच्चे जब भूखे घर में आए और कहें माँ भूख लगी है तो सब काम छोड़ के पहले उनको चाहे स्तन का दूध पिलाएं या ताज़ा रोटी बना के देनी चाहिए। और माँ ऐसे बच्चे के लिए मक्खन निकालती हुई, बच्चा देखेगा कि बड़ा परिश्रम कर रही है तो बच्चे के मन में आएगा बड़ा होके मैं सेवा करूंगा, मेरी माँ देखो कितना मेरे लिए परिश्रम कर रही है, सब काम छोड़ के मुझे दूध पिला रही है। अब आजकल के बच्चों का घर में आके और माँ से कहे माँ भले टेलीविजन देखती हो, माँ भूख लगी है तो माँ ऐसे हाथ करती है वो फ्रिज में जाओ पड़ा है निकाल के खाओ, बेचारा दरवाजा खोलता है अंदर से ठंडी हवा आती है, बोलता है माँ ठंडी हो गई अब कोई गर्म नहीं खिलाने वाली, तो उसके दिल में आता है। और माँ को सुबह देखता है मक्खन निकालती है नहीं और ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा के देती है, तो बच्चे को दिल में आएगा मैं भी बड़ा होके अच्छी तरह से मैया को मक्खन लगाया करूँगा, सुबह 5 रुपया सात को 10 रुपया। ये हम जैसे करते हैं ऐसे बच्चा हमारे से व्यवहार करता है। तो यशोदा के इस व्यवहार से हमारे को कैसे घर गृहस्थी में बच्चों को पालना चाहिए ये सीखने की बात है। और मैया का प्रेम से दूध पीते हुए कन्हैया थक नहीं रहा है और माँ का दूध भी खत्म होने वाला नहीं है और बार बार कन्हैया मुस्कुरा के माँ के मुख को देखता है, माँ कन्हैया को मुख को देखता है। इस प्रसंग को कहते हुए हर समय ये बात हमको अच्छा लगता है कहने में कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे का संबंध स्थापित होता है, क्योंकि माँ के मुख को बच्चा देखता है और बच्चे के मुख को माँ देखती है और बच्चा पीते पीते किसी वक्त बाहर मुंह निकालता है, कभी हंसता है कभी रोता है, तो माँ और बच्चे के बीच में ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि लाखों बच्चों के अंदर माँ अपने बच्चे के रोने के आवाज को पहचान दे और बच्चा 100 स्त्री में अपनी माँ के मुख को पहचान देता है। ये बच्चों को संबंध कब होता है? जब दूध पिलाते हैं बच्चे। अब बच्चे के रोने को माताओं को पता नहीं लगता, लेकिन अपने मोबाइल की घंटी का पता लगता है। अब बच्चों की जगह मोबाइल ने ले ली है और सबके अपने 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 रिंग का सबको पता लग जाता है, लेकिन बच्चा किसका रो रहा है पूछेंगे, बच्चा किसका रो रहा है, भले अपना हो पता ही नहीं है। वो बहुत बहुत दूरी हो गई, पहचान की भी दूरी हो रही है। अब हालात ऐसे है, बच्चे वो घर में जो रखते हैं कि आया क्या बोलते हैं उसको, मैड बोलते हैं अंग्रेजी में, मैड का मतलब जो बच्चे को पागल कर दे, माँ की जगह मैड तो बच्चा होगा मैड, तो उसी से ज्यादा प्यार करता है, माँ से उसको कुछ लेना देना होता नहीं। तो ये संबंध में आप देख लीजिए, अगर ये बच्चे को दूध अगर माँ नहीं पिलाएगी तो क्या होगा, स्तन से दूध माँ अगर बच्चे को नहीं पिलाएगी तो क्या होगा, आपका क्या विचार है, कैसे पिलाती है माताएं दूध आजकल, बच्चों को प्राय दूध कैसे पिलाया जाता है, हाँ बोतल से। तो अब बच्चे का और संबंध बोतल का कैसा होगा, बच्चा छोटा है पीते पीते बोतल को देखेगा, मेरी माँ है मेरा पालन पोषण करती है, इसी के लिए मैं जीवन भर सेवा करता रहूंगा, और बोतल के साथ ऐसा प्रेम हो जाएगा 10-12 साल का हुआ नहीं और कोको कोला की बोतल पाको कोला की बोतल सारा दिन हाथ में देखोगे तो वो करे तू ये क्यों पी रहा है, ले यही तो मेरी माँ है, इसी से तो मेरा संबंध स्थापित हुआ है, बचपन में इसको प्रेम से पिया था दूध, अब और 18 से 20 तक हुआ नहीं तो फिर बियर की बोतल जानी वाकर की बोतल, अरे ये क्या कर रहा है तू छोकरा, बिगड़ गया लड़का, नहीं ये मेरी माँ, इसके साथ मेरा प्रेम का रिश्ता, यही तो मेरे प्राणों का सहारा है, इसी को मैं पीऊंगा। अभी 35 साल से 5 साल ऊपर नहीं हुए है 40 से पहले अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल को, अरे मेरी माँ ऊपर कहाँ चली गई, मैं ऊपर आ रहा हूँ और रवाना। तो उसका कथा समापन, हाथ में बोतल थी तो ऊपर बोतल दिखाई देगी, और तो ये बहुत बुरा होता है, इसको बड़ी सावधानी से बच्चों को प्रेम से दूध पिलाना चाहिए। अब इतने प्रेम से माता और पिता के बीच में दूध के पिलाने का आनंद चल रहा था, लेकिन अंगेठी के ऊपर रखा हुआ दूध जो माँ ने उबलने के लिए रखा था, जिससे उनको रेबड़ी बनानी थी भगवान के लिए, और वो दूध उफनने लगा, छू का आवाज आया और मैया ने उधर देखा, अभी तक कृष्ण के मुख को देख रही थी और अभी कृष्ण के मुख से नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये नजर हटी, भगवान के चेहरे से नजर हटी, दुर्घटना घटी, और वो दूध जो था, वो दूध भी जो गोकुल का दूध है, भगवान के धाम का दूध है, वो सामान्य दूध नहीं है, वो भी भक्त है, वो कहता है मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, आग के ऊपर जल रहा हूँ, आज माँ का ही सब दूध पिएगा तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो आत्महत्या करके आग में अपने आप को भस्म कर देता हूँ। लेकिन मैया ने कहा नहीं नहीं भक्त, तुम्हारे को ऐसे नहीं करना चाहिए, तेरी मैं रक्षा करती हूँ, तुम्हारे को भगवान की सेवा में लगाऊंगी। भागते हुए यशोदा ने कहा मेरा अपना दूध है बाद में पिला दूंगी, इसमें क्या है, इसको नीचे रख दिया और भागती हुई गई और दूध ने मुंह लटका लिया, पानी छिड़क दिया, दूध तो नीचे बैठ गया, लेकिन कन्हैया को क्रोध आ गया, बोला मेरी माँ, मैं खीर सागर को छोड़ के इसका बेटा बना, वो खीर सागर का स्वामी हूँ, खीर सागर में सोता हूँ, और इसके 2 किलो दूध के गिरने के ऊपर मेरे को पटक के चली गई, ये कोई बात है, मैं दिखाऊं इसको क्या कर सकता हूँ, आज इसको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। सोचा मेरी माँ से सुबह से आज कॉम्पिटिशन हो रही है, मेरी माँ कहती है कि मैं तेरे को मक्खन खिलाऊंगी और मैंने कहा नहीं तेरा दूध पीऊंगा, सुबह तो माँ को हरा दिया और मैंने दूध पी लिया, लेकिन आज मेरे को आधे में छोड़ गई, अभी तक तो मेरा पेट भरा ही नहीं, अरे ये मटका है ना इसने हमारे बीच में झगड़ा कराया है, ये जो भांड पड़ा है ना ये मेरी माँ के पसीने का कारण है, ये इसने थका दिया मेरी माँ को, मैं इसी को तोड़ दूंगा। और उसने मटका पत्थर पड़ा था मसाला पीसने वाला उठाया, हाथ में कंगन को पकड़ा के आवाज ना हो, और जहां नीचे भरा हुआ था वहां दे मारा ठा बड़ा, और सारा आधा बिलोया हुआ मही नीचे बह गया, और नाचने लगा, पता लगेगा। और ये हंडी यशोदा की सास के जमाने की थी, क्योंकि ये हंडी जो है जिसमें मंथन करते हैं, उसने इतना मक्खन खा के वो चुकली हो गई थी। अब नई अक्ल हंडी लगाते हैं तो घी खराब होता है, तो उसी को संभाल के रखा हुआ था। लोगों को बर्तन दूध दे के जाएंगे, दही दे के जाएंगे, लेकिन बर्तन वापस दो, बर्तन को बहुत चिंतन होता है। तो मैया ने ये मटका फोड़ा और फिर डर लगा। थोड़ी देर तो मजा आया बहते हुए दही को देखकर, और फिर बोला मैया मारेगी। सो उसी के ऊपर पांव देते हुए दूसरे कमर में गया, बोला क्या करना चाहिए। मैं कहूंगा मैं भूखा था, इसलिए मैं दूसरे कमरे में कल का रखा हुआ मक्खन है उसको खाता हूं। और दूसरे कमरे में उखल लेके और चढ़ा है, और मक्खन खाने के लिए मैया वहां से लौट के आई, देखा बच्चा तो है नहीं, मटका फूटा हुआ है। यशोदा थोड़ी मुस्कुराई कि कितना शरारती हो गया है, इतना छोटा है बच्चे घर की चीजों की रक्षा करते हैं, ये घर के सामान तोड़ना अभी से शुरू कर दिया। और फिर यशोदा के हृदय में थोड़ा भय हुआ कि डर के मारे कहीं जंगल में चला गया, तो अभी नाश्ता नहीं किया है, ये तो शाम तक फिर आएगा नहीं, तो कहाँ है, देखूं तो सही इसको। तो उसके चरणों के निशान देखे जो गिरे हुए आधे मंथे हुए दही के ऊपर पड़े थे। चरणों के निशानों को देखती हुई मैया पीछे गई, देखा दूसरे कमरे में उखल के ऊपर चढ़ा हुआ है, और बंदर खड़े हैं, कौए खड़े हैं, और मक्खन फेंक के डाल रहा। मैया ने लाठी उठा ली कि मक्खन बंदर है कौए है, लाठी तो ले लूं, और दबे पांव पीछे से गई कि इसको पकड़ती हूँ। लेकिन इतना होशियार है, ऐसे आंख टेढ़ी से देखा मैया आ रही है, मैया नजदीक आई, उखल से कूदे और भागे, आगे कन्हैया और पीछे मैया, पहले घर के अंदर ऐसे भागे और फिर घर के मेन दरवाजे से बाहर निकल गए। अब नंद भवन के दरवाजे से जैसे बाहर निकले तो भगवान ने कहा, कृष्ण समझा कि यही मैया थोड़ी, अभी सुबह सुबह 5 बजे बाहर निकल के आएगी थोड़ी, लेकिन आज यशोदा भी बाहर निकल गई। आगे कृष्ण जा रहा है, पीछे यशोदा जा रही है। अब तो बड़ी बूढ़ी गोपियां जो थी बाहर, कोई गोबर थेप रही थी, कोई काम झाड़ू निकाल रही, सबने देखा अरे नंदरानी को क्या हो गया, सुबह सुबह लाले के पीछे छड़ी लोके भाग रही है क्या, और पीछे से भाग रही थी और जाके कन्हैया को पीछे से पकड़ लिए। जो भगवान के पीछे भागता है तो भगवान मिल ही जाते हैं, और फूल नीचे गिर रहे थे पीछे से, मैया के फूल पीछे चल रहे थे साथ साथ कि हम भी तुम्हारे साथ है। मैया ने पकड़ के कहा मटका फोड़ के आए हो, क्यों, सबसे बड़ा दुख मटके फोड़ने का था। बोला नहीं फोड़ा। बोला कैसे फूटा, बोला चांदी का इतना मोटा कड़ा तुम्हारे पांव में जल्दी उठ के गई थी वो लगा, सफेद जूट। बोले वो मक्खन बंदर को खिला रहे थे, बोले जिसने बंदर बनाया वो खिला रहा था, झूठ थोड़ी बोल रहा है, बंदर जिसने बनाया वही खिला रहा है। बोले तू बंदर है, बोला छोड़ दो जंगल में चला जाता हूं, घर में क्यों रख के बैठी हो, आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, बांध के रखूंगी। तू इस उखल का संग करता है, खल का संग कर रहा है ना, इसके साथ तेरे को बांधूंगी। अब कन्हैया ने कहा कि मैया आज तो कन्हैया लाठ को देखते, बोला पहले लाठी फेंको फिर बात करो, लाठी फेंको। तो यशोदा के हृदय में तो स्नेह था, तो पराये बच्चों से भी प्रेम करती थी, बालक हुआ ही नहीं था अपना, तो ये तो सिर्फ डांट डपट कर रही थी। तो उसने लाठी को फेंक दिया और कन्हैया रोने लगा जोर जोर से, ऐसे नकली आंसू भी कुछ असली आंसू जैसे भी हो। और पहले जब कभी रोता था तो मैया अपने आंचल से साफ करती थी, आज दोनों आंखों से काजल निकल के बोलते, काजल तेरा डाला हुआ निकाल दूंगा, ये ले लो तेरा कपड़ा नहीं पहनूंगा, ऐसे जैसे बच्चे गुस्सा करते हैं सामान उतारते हैं तो वो सब निकाल के रो रहा है। मैया बोले कुछ भी करो आज तेरे को बांध के छोड़ूंगी। तब गोपियां कहती है यशोदा लाला है क्यों पकड़ के इसको सुबह सुबह में इतना बांधने का प्रयास कर रही हो। बोले क्यों रे, तेरे घर में मक्खन खाता है तब शिकायत करने आती हो, अगर मेरा मटका फोड़ा है तो बोलता है तुम छोड़ दो, तुम्हारे घर में आता है तुम तो शिकायत क्यों करती हो, चुप कर दो मैं इसको आज बांधूंगी। और अपने जूड़े से बहुत रेशमी धागा निकाला, उखल में बांधा और कन्हैया की कमर में बांध रही है, काला धागा बंधा हुआ है नजर न लगे, और ये रस्सी पूरी आ नहीं रही, दो उंगल छोटी हो गया, दूसरा धागा निकाला छोटा हो गया, अरे एक और रस्सी लेके तो आओ, एक ग्वाल नहीं, एक और रस्सी ले आओ, काम वाली एक रस्सी लाओ, ऐसा 10-12 रस्सी के अंदर रस्सी जोड़ रही है, रस्सी न छोटी हो रही है न पेट मोटा हो रहा है, दो उंगल छोटी पड़ रही है। अरे सब हंस की कहते हैं, अरे ये यशोदा तेरे बच्चे के भाग में भगवान ने बंधन लिखा ही नहीं है, तू खुश हो जा, छोड़ दे। बोला आज शाम हो जाए नहीं छोड़ूंगी, आज तो इसको बांध के रखूंगी। और यशोदा कहती है क्या है, इतनी मुट्ठी जितनी कमर है और ये इतनी बड़ी रस्सी ना छोटी हो रही है, हो क्या रहा है, आश्चर्य है, इतने बच्चे को मैं बांध नहीं रहे, अभी नहीं सिखाऊंगी तो कब सिखाऊंगी। और जब इसने कहा कि मैं शाम हो जाए, तो भगवान ने पहली बार यशोदा की ओर देखा और देखा कि यशोदा को पसीने से लथपथ है, बाल सारे बिचारी के बिखर गए हैं, तो भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ, दया आ गई। अरे मेरी माँ इतना परिश्रम कर रही है मेरे को बांधने के लिए। और जैसे ही भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ, यशोदा ने गांठ लगाई और कृष्ण बंध गया। तो बोले दो उंगल रस्सी छोटी क्या होती है, बोला दो उंगल छोटी में दो बातें होती हैं, एक बात होती है भक्त का प्रयास, भक्त को यशोदा की तरह पसीना पसीना जब तक नहीं हो जाए तब तक अपने भगवान की भक्ति को जप को करता रहे, और दूसरा उंगल है भगवान की करुणा, जब भगवान देखेगा कि भक्त मुझे पाना ही चाहता है और तब भगवान कृपा करेगा तो भगवान हम भक्त के बस में आ जाते हैं। और दो उंगल छोटी इसलिए भी थी कि एक तो भक्त मेरे नारद का भी काम करना है, इसलिए मैं तो नारद के वचनों से बंधा हुआ हूं, आज मैं नहीं बंधूंगा तो नारद के वचन से कैसे मुक्त करूंगा। ये जो नारद ने जो दुआ हो को आशीर्वाद दिया है कि मैं इनका उद्धार करूंगा, तो भगवान नारद के, वो नारद के वचन से बंधे हुए थे, यशोदा के प्रेम से बंधे हुए थे और कृष्ण बंध गए। तो हमें क्या सीखना चाहिए, हमें अपना साधन अच्छी तरह से करना चाहिए और इतना करना चाहिए कि भगवान आश्चर्यचकित होकर देखें कि कौन है जो मेरे को पाने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, और जब वो देखेंगे हमारे को कि हम उसी को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, तब भगवान वश में हो जाते हैं। नहीं तो भगवान से कुछ मांगो तो भाई तो मैं दे देंगे, लेकिन भगवान वश में नहीं आते हैं। तो वहां सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टक में लिखा है भक्ति बधो, भक्ति से यशोदा ने बांधा, रस्सी से नहीं बांधा, अपने प्रेम और भक्ति से कृष्ण को बांध दिया। और फिर यशोदा ने कहा अभी जाके दोबारा दूसरा दूध में से दही मक्खन मंथन कर लूं और आके कुछ खिला लूं, बच्चा भूखा है, तब तक बंधा रहे। और इतनी देर में दूसरे ग्वाल बाल आ गए और बलराम जी आ गए, और आते ही बलराम जी ने कहा किसने बांधा है तुमको, नहीं जानते हो ये कौन है, अरे यही तो नरसिंह है, यही तो प्रहलाद के लिए है, यही तो राम है रावण का वध करने वाला। जोर जोर से कहने लगा किसने बांधा है, अंदर यशोदा सुन रही है, अरे बोला दाऊ जी क्या कह रहा है कि यहां शेष भी यहां, गणेश भी यहां और महेश भी यहां, सारे यहां, और किसी का घर नहीं मिला, सारे अवतार मेरे घर में आए। अरे तू चुप करता है कि दूसरी छोर में तेरे को भी बांध दूं। वो अनंत शेष का यशोदा के प्रेम के सामने चुप हो गया। ग्वाल माल कहते हैं अब क्या करें, कहने बोला खेलना तो है, अब ऐसा करो मेरे उखल पीछे को टेढ़ा कर दो, उखल को कर दिया टेढ़ा। बोला अब मैं इसे कुछ देर के चलता हूं, आप मेरे पीछे आओ, ये हमारी गाड़ी है, हम खेलते हैं गाड़ी गाड़ी। उखल को गाड़ी बना दिया, आगे कन्हैया जा रहा है, पीछे उखल घूम तो गोल गोल घूमता जा रहा है और ग्वाल बाल नाचते हुए जा रहे हैं। अब भगवान को याद आया, अरे मेरे नंद, मेरे नारद भगत ने ये दो पेड़ खड़े हैं, इनको आशीर्वाद दिया था, दो पेड़ नंद के आंगन में अर्जुन के नाम के दो यमला, अर्जुन यमला ने जोड़ा, ये जुड़वान दो पेड़ खड़े थे, भगवान दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए और पीछे उखल अटक गया। भगवान ने न चरण का स्पर्श किया, कोई खींचा नहीं, धड़ोम से दो पेड़ नीचे गिरे। अभी आवाज आने में थोड़ी देर लगी, आवाज नहीं आया, दोनों पेड़ों के अंदर से दो देवता निकले और श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं भगवान हम आपको खोल दें। बोले चुप करो पागलो, यहां से भागो, मेरा बाबा आने वाला है, मैं बंधे हुए तुमको खोल दिया, तुम क्या मेरे को खोलोगे। दोनों देवताओं ने भगवान की परिक्रमा की और वहां से चले गए। तब आवाज बहुत आवाज हो गया, नंद बाबा गौशाला से भागते हुए आए, कुछ गोपों के संग देखा, दो बड़े पेड़ों के बीच में छोटा सा कन्हैया रस्सी से बंधा हुआ उखल से खड़ा है, बाबा ने मुस्कुराया, कहीं डर न जाए, बच्चे को सीधा गोद में उठा लिया, गोद में उठा के गांठ खोल के और कहा, बेटा किसने बांधा? बोला, मैया ने बांधा। गांठ खुल गई। बोला, गांठ फिर ग्वाल बालों से क्यों नहीं खुली? बोला, वात्सल्य रस की गांठ माँ ने डाली थी, नंद बाबा वात्सल्य प्रेम का है, उनसे खुल गई। ग्वाल बाला सखा प्रेम वाले रस गांठ नहीं खोल सकते, तो जिस रस में बांधा गया उसी रस से खुलता है, दूसरे रस से नहीं खुल सकता है। तो आज नंद बाबा कहते हैं, तेरी मैया ने बांधा, चलो फिर गौशाला चलते हैं। गौशाला में ले जाके मिश्री दे दी, दूध पिलाया और कोई तो सो जा लाला यही। अब तो नंद बाबा जो आवाज का पता लगा, पेड़ गिरने का पता लगा, सारे ब्रज के अंदर से लोग गए, देखे बड़े किरियारी, किसने पेड़ गिराए? वही बच्चे कहते हैं, ये कन्हैया ने गिराया। कन्हैया कैसे गिराएगा? बोला, उन्होंने गिराए। आज भी किसी ने नहीं माना। और तब यशोदा को पता लगा, रोहिणी आई, बलराम आया। बोला, कन्हैया चलो मैया घर में बुला रही। बोला, नहीं जाऊंगा मैया के पास, मैया बांधती है, नहीं जाऊंगा। सुबह सुबह मेरे को भगाया, बांधा, तो कहाँ सोएगा? बाबा के पास सोऊंगा, दूध कहाँ से पिएगा? गैया का दूध पीऊंगा। बलराम जी नजदीक का धक्का दे दिया, नहीं तुमने छुड़ाया नहीं मेरे को, जा। अब नंद बाबा ने देखा कि क्या करो, इसके माँ के प्रेम को जागृत करना चाहिए। नंद बाबा ने गोद में उठाया और दूसरे हाथ में लाठी लेकर कहा, तुम्हारे को तेरी मैया ने बांधा ना, आज इस लाठी से तेरी मैया। बस इतना कहा, कूद के कन्हैया भागा, यशोदा के गले को पकड़ लिया। बोला, ना ना मैया को ना मारना। और मैया को गले को पकड़ लिया कन्हैया ने, और मैया ने कन्हैया को पकड़ के रोने लगी। मैया जब जोर जोर से रोने लगी तो कन्हैया कहते, मैया सुबह मेरे को रुलाती है, शाम को खुद रोती है। और फिर कहा कि अब सबको भोजन कराओ। फिर सबको भोजन कराया, तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया कि ये दो पेड़ कौन थे जिसमें से देवता निकले, और भगवान ने उनका कैसे उद्धार किया? और इसके उत्तर में परीक्षित सुखदेव महाराज कहते हैं, जो देवताओं का कोष अध्यक्ष है कुबेर, उसके दो पुत्र हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। ये एक तो धन के कोष अध्यक्ष के पुत्र हैं, और दूसरा ये भगवान शंकर के अनुचर हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं। ये दो चीजें थी। और तीसरा जो मंदाकिनी नदी है, गंगा धीमी धीमी चलती है, उसको मंदाकिनी कहते हैं। जो तेज चलती है उसको अलकनंदा कहते हैं। बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है, केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, तो मंद गति से चलती है वो। उस मंद गति वाली नदी में शराब पी के और कुछ अप्सराओं के संग नंगे नहा रहे थे। तो दोष क्या बताया कि धन का दोष, बड़े आदमी का पीछे चलने वाले के कारण अहंकार भी आ गया, धन का अहंकार, फिर मद पिया हुआ था, और फिर स्त्रियों के संग, जहां पवित्र लोग गंगा में अपना पाप धोते हैं वहां पाप कर रहे थे। नारद जी भगवत इच्छा से वहां से गुजरे, और नारद जी को गुजरते हुए देखा तो स्त्रियों ने तो लज्जा के कारण कपड़ा ढक के एक तरफ हो गई, ये नंगे के नंगे खड़े रहे। नारद जी ने देखा कि इनको हैं तो देवता के पुत्र, इनके अनुग्रह करने के लिए, इनका भला करने के लिए नारद ने कहा, इस संसार में नशे हैं चार, उच्च कुल में जन्म का नशा, उच्च विद्या का नशा, उच्च पद का नशा और धन का नशा और सुंदरता का नशा। इन चारों में से सबसे खराब नशा है धन का, धन मद अंध। धन के मद में जब अंधा कोई होता है तो वो कुछ भी कर लेता है, इनको धन के मद का नशा है। अब कांटा जब लगता है तो दूसरे कांटे से ही निकलता है। अब इसको धन के मद का अंध है तो इसका इलाज है, इसको दरिद्र बना देना चाहिए तो इसको पता लगे कि धन कितना जरूरी है। और गरीब आदमी को, धनी आदमी को एक तो धन का नशा, और उसके कारण वो कभी साधु संत से बात सुनेगा नहीं, मिलेगा नहीं, कथा में आएगा ही नहीं। लेकिन गरीब को और कुछ नहीं, केवल न धन होने के दुख होता है, इसलिए गरीब के पास साधु भी जाते हैं और गरीब लोग सत्कथा में भी आते हैं। तो इसलिए ये तुम पेड़ बन जाओ दोनों। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, क्षमा करो देव ऋषि, हमसे गलती हो गई है। देवश्री का ठीक है, तुम नंद भवन में पेड़ बनोगे और द्वापर के अंतिम चरण में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करोगे, तब वो आपको उद्धार करेगा, आप देव योनि को प्राप्त करोगे। तो ये दोनों देवता जो निकले उन पेड़ों से, ये नल कुबेर और मणिग्रीव थे। नारद के अनुग्रह के करे के कारण भगवान ने उनका उद्धार किया और फिर इनको बहुत उत्तम स्थान दे दिया। ये भगवान की लीलाएं आज गाते हैं। यह कथा ऐसे, एक दिन गर्ग ऋषि मथुरा से नंदगांव गोकुल में आ गए, तो गर्ग ऋषि को देखकर नंद बाबा प्रसन्न होकर कहते हैं, हमारा भाग है आप इतने बड़े महान ऋषि भगवान के भक्त आज हमारे यहाँ पधारे हैं, हम धन्य हो गए। एक काम करो, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, आप इनका नाम तो कर लो। गर्ग ऋषि कहते हैं, देखो सबको मालूम है मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, अगर मैं बच्चों का नाम करूंगा, आप सब लोगों को बुलाओगे तो कंस को पता लगेगा कि वसुदेव के बच्चे नंद गोकुल में छुपे हुए हैं। नंद बाबा के ना, नहीं नहीं हम किसी को बोलेंगे नहीं, किसी को बताएंगे भी नहीं, हमारी गौशाला में पहले ही गोबर का पोचा लगा हुआ है, बस दो माताएं दो बच्चे, एक मैं एक आप, और किसी को नहीं बताते हैं। आप चलिए, आपके द्वारा इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। एक बात और आपके मन में कहीं रह जाए ना, माटी खाते हुए परीक्षित ने जब पूछा कि कौन है ये नंद और यशोदा, तो क्या उत्तर दिया था सुखदेव गोस्वामी ने, ये द्रोण और धरा वसु है, ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया था। अब माखन चोरी की दामोदर लीला के अंत में सुखदेव महाराज कहते हैं, ये जो गोपी यशोदा को सौभाग्य प्राप्त हुआ कृष्ण को बांधने का, ये न ब्रह्मा को हुआ, न शंकर को हुआ, न लक्ष्मी को हुआ। क्या ब्रह्मा कृष्ण को कह सकता है तुम खड़े हो जाओ तेरे को बांधो? शंकर जी कह सकते हैं, लक्ष्मी भी नहीं कह सकती, तो इस गोपी को कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत ये है, जब ब्रह्मा जी को जो चीज प्राप्त नहीं है वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से दूसरे को कहां से होगी। इसका अर्थ है कि यशोदा और नंद भगवान के नित्य वात्सल्य के माता पिता गौलोक धाम में हैं, वो भगवान के साथ आते हैं, लेकिन कोई दूसरा भक्त किसी ब्रह्मा जैसे महा आचार्य के शरण लेता है तो उनको नंद और यशोदा के शरीर में प्रवेश होना दिया जाता है ताकि वो उस लीला उनको देख सके। ये दो दिन पहले कहीं मैं द्वारका में कह रहा था तो उसने अच्छा उदाहरण दिया, ये दो सिम वाला मोबाइल जैसे होता है, ऐसे दो सिम वाला मोबाइल बन गया नंद बाबा। एक तो नंद बाबा स्वयं थे और एक अंदर द्रोण आ गया, तो ये तो दो सिम वाला मोबाइल होते हैं। तो ये भगवान की लीला में सब दो सिम वाले हैं, एक तो असली भगवान का परिकर है, एक कोई देवता उसके अंदर दूसरी सिम लगा के अपने भी काम कर रहा है, भगवान की सेवा का दर्शन कर रहा है। तो ये काम हो सकता है आपके समझ में इतना आसानी से ना आए, लेकिन ये बहुत बड़ा गहरा सिद्धांत है कि कुछ चीजें जो है दिखने में एक होती हैं लेकिन असल में दूसरी भी उसकी असल। और फिर तो सुखदेव महाराज कहते हैं, जो इस गोपी को सौभाग्य मिला ये तो ज्ञानी को नहीं मिलता है, योगी को नहीं मिलता है, ये तो केवल भक्तों का ही भाग है जो भगवान को ऐसे प्रेम से कोई जूठन खिला सकता है, कोई गोद में सुला सकता है, कोई रस्सी से बांध सकता है, ये तो भक्तों के साथ व्यवहार होता है, ये तो कर्मी को नहीं मिलते, ज्ञानी को नहीं मिलते, योगी को भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ ऐसे भगवान और गोपियों को गोपियां क्यों कहते हैं, गोपी को गोपियां इसलिए कहते हैं कि भगवान आकर मथुरा से आए क्यों थे गोकुल में, गोपनीय रहने के लिए, छुपने के लिए ना। तो गोपियों ने भगवान को ऐसा छुपा के रखा कि किसी को पता ही नहीं लगने दिया। एक गोपी कहती है, अरे तू नाचेगा तेरे को छाछ पिलाऊंगी, तो थैया थैया नाच रहा है। एक गोपी कहेगी तेरे को बांधूंगा, तो बंध जाता है। तो कंस कहेगा जिसको गोपियां नचा रही हैं, बांध रही हैं, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो कृष्ण की भगवत्ता को गोपियों ने छुपा के रखा, उसको कभी माखन चोर बोलती हैं, कभी बोलते हैं ये हमारे बस्तर चुरा रहा है, कभी बोलते हैं ये तो कंस कहेगा ये क्या करेगा, जो गोपियां जिसको नचा रही है वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो गोपियों ने भगवान की भगवत्ता को गोपनीय रखा, छुपा के रखा, इसलिए उनको गोपियां कह जाती हैं। और दूसरा गोपियों को अर्थ है जो इंद्रियों से, गो कहते हैं इंद्रियों से, और पी कहते हैं पीने को, जो श्री कृष्ण का रस इंद्रियों से पीते हैं, समाधि में मन को रोक के नहीं, खुली आंखों से कृष्ण का दर्शन करते हैं, कानों से कृष्ण के मधुर बांसुरी को सुनते हैं, होंठों से कृष्ण को चुंबन करते हैं, मुहुश्चुंबितम् गोपया, माता यशोदा चुंबन करती है, और जो भगवान श्री कृष्ण के साथ आलिंगन करते हैं भक्त, ये तो इंद्रियों के साथ गोप और गोपियां भगवान का रस ले रहे हैं, ये इंद्रियों को रोक के नहीं, इंद्रियों के साथ ले रहे हैं, ये समाधि में नहीं, ये जागते हुए आनंद ले रहे हैं। तो यहां नंद बाबा ने जब गर्ग ऋषि को ऐसे प्रार्थना की, तो गर्ग ऋषि ने गौशाला में जाके पहले तो कहा, रोहिणी आपके गोद में जो बालक है ना, रोहिणी जो आपकी गोद में बालक है, ये दो परिवारों के बीच में सेतु का काम करेगा, दो परिवारों को मिलाएगा, यादवों को और ब्रजवासियों का बीच में सेतु का काम करेगा, इसलिए इसको संकर्षण कहेंगे, दोनों को आपस में जोड़ के रखने वाला होगा, बड़ा बलशाली होगा, इसलिए लोग इसको बलभद्र भी कहेंगे, और ये आनंद देगा सबको, इसलिए इसको राम कहेंगे, ये इसके तीन नाम हैं। तो गर्ग ऋषि ने बलराम जी के नाम रखे, संकृष्ण, बलभद्र और राम। और फिर कृष्ण की ओर देख के कहा, ये नंद बाबा जो आपका बेटा है ना, ये कभी वसुदेव का बेटा भी था, और ये युग युग में कभी रक्त वर्ण में आता है, कभी नील वर्ण में आता है, और कभी पीत वर्ण में आता है, कभी सफेद वर्ण में आता है, युग युग में ही अलग रंग में आता है। तो पीत वर्ण में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो आए, उसका उल्लेख नंद बाबा को गर्ग जी ने पहले कह के सुना दिया कि ये कभी पीले रंग में सोने जैसे, गोरे रंग में भी आते हैं, कभी अवतार लेते हैं तो, लेकिन वो छुपा हुआ अवतार होता है। और फिर गर्ग ऋषि ने कहा, नंद बाबा ये साक्षात नारायण के समान है, आप इसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करना, ये आपकी रक्षा करेगा, और इसका नाम छोटे दो शब्द का कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऐसे भगवान का नामकरण संस्कार यहां हो गया है। इसके बाद वृंदावन के अंदर जो ऋतुएं बदलती हैं, उन ऋतुओं का वर्णन आता है, कितने ऋतुओं का आपको पता है? हाँ जी, कितने हैं? बहुत अच्छे। तो रानीपुर के रानी बाग के लोगों को पता है, छह ऋतु होती है, ऋतुएं छह होती हैं। तो वर्षा ऋतु का भी वर्णन है, और वर्षा ऋतु के वर्णन में बहुत सुंदर वृंदावन का वर्णन करते हुए, हम तो एक श्लोक की बात करके आगे बढ़ेंगे, और वो श्लोक ये है कि जब आकाश में बादल आते हैं तो मोर बड़ा मगन होकर नाचने लगता है कि अब वर्षा होने वाली है, ये बरसात ऋतु से पहले की दर्श झांकी है। और इसके दूसरी लाइन में व्यास देव ने लिखा है, ऐसे ही सद्ग्रस्ती जो है किसी साधु को देखते हैं, सत्संग देखते हैं, तो मोर की तरह आनंद में मगन होकर नाचते हैं कि अब हमारा भी जो हृदय में जलन है, दुख है, ताप है, संताप है, आज साधु के संग से और हरि कथा से शीतल हो जाएगा। ऐसा अद्भुत उदाहरण दिया है, एक एक बात का, बरसात की ऋतु का और उससे पहले ग्रीष्म की ऋतु का और बरसात जाने के बाद का भागवत में वर्णन है और उसके साथ बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। और प्रभुपाद जी अभी अमेरिका गए नहीं थे, इस्कान की स्थापना की नहीं थी, तब ये पुस्तक में से दो अध्यायों को निकाल के लिखा था भागवत का प्रकाश, और वो जर्मनी कहीं भेजना चाह रहे थे एक सम्मेलन में कि लोग प्रकृति को देखना चाहते हैं लेकिन प्रकृति से भागवत में कैसी सुंदर शिक्षाएं। और इसके यहाँ एक वर्णन ये आता है कि अब गोकुल में 3.5 साल पूरे होने वाले हैं, एक लीला और होती है और फिर भगवान गोकुल से स्थानांतर करके वृंदावन आते हैं। तो वो कौन सी लीला होती है? वो लीला ये होती है कि एक मथुरा की ग्वालन फल बेचने वाली टोकरी फल की भरी है और सुना था कि नंद भवन में छोटा सा बालक है और उसका दर्शन करना है और फल सर के ऊपर टोकरी रखी है और गली गली में गाती जा रही है सेब ले लो, आम ले लो, सेब ले लो, चिप्पू ले लो, सेब ले लो। लेकिन जैसे गोकुल में आई उसको ये सब भूल गया, बोलिए न गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, नंदलाल ले लो। अरे तो भगवान कहता है मेरे को कौन बेच रहा है, ये क्या है, कौन है? तो घर से थोड़े से दाने उठाए हैं और बाहर आई तो ग्वालन को देखा है, ग्वालन को कहा ये लो मैया दाने ले लो, फल दे दो। और छोटे से हाथों में से दाने सब गिर गए, 4-5 दाने बचे थे, ले लो दाना, फल दे दो। बोला ऐसे नहीं दूंगी फल, क्या करूं, मेरी गोद में बैठो, मेरे को मैया को तो फल दूंगी। अब कन्हैया देखा कोई माँ देख तो नहीं, ऐसे देखा दोनों तरफ से और एकदम कूद के उसकी गोद में गया और कमैया ऐसे करके नीचे उतरा, बोला फल दे दो। वो तो इतनी देर में ऐसी पागल हो गई, वो कन्हैया को देख रही है जितना फल है हाथ में, जितना आया भर दिया और ऐसे कन्हैया को जाते हुए देख रही है, ठुमक ठुमक करता अंदर गया। यशोदा और गोपियों के संग में बैठी है, कहता मैया फल लाया, अरे इतना सारा फल कैसे दे दिया ग्वालन ने, नहीं सब दे दिया। वो सब बांट के वो खाने लगी, ये गोपियां उठ के वापस जाए तो ग्वालन ऐसे बैठी हुई है, अरे बावरी अभी क्या कर रही है? बोला लाला आएगा फिर फल लेके, वो सो गया, और सो गया। ऐसे उठी ग्वालन, टोकरी सर के ऊपर रखी, जमुना को पार करते हुए देखती, अरे भारी पड़ी है, सब फल तो दे दिया, ये क्या है? नीचे उतार के देखती है तो जितने दाने थे भगवान के हाथ से वो सब हीरे माणक मोती हो गए। ये देख के कहता, अरे कन्हैया तू छलिया है, मेरे को छल दिया, तू ठग के मेरे को माया मोह में डालेगा। नहीं रे नहीं, ये तेरी सारी माया तेरी जमुना में डाल के, टोकरी को जमुना में, और उधर ही गोकुल में कन्हैया कन्हैया कर रही थी। और ये लीला जैसे पूरी होती है तो गोप सब इकट्ठे होके कहते हैं, देखो यहाँ पहले पूतना आई, फिर तृणावर्त आया, फिर शक्टासुर आया और फिर ये दो पेड़ गिर गए, यहाँ हमारे बालक को बड़ा कष्ट हो रहा है, कोई न कोई आपत्ति आ रही है, अब हम ये स्थान को छोड़ देते हैं। सारे गोकुल वासियों ने एक बच्चे के हित के लिए अपना खेत, अपना खलियान, अपना घर